ब्रह्म विज्ञान केंद्र से कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वयं प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अब विशेष कार्यक्रम है छांदोग्य उपनिषद ज्ञान यज्ञ। दीर्घायु स्वकीय दीर्घायु के लिए उपासना कही गई। 116 वर्ष किस प्रकार जीवित रह सकता है चिंतन करने के लिए उपासना करने के लिए कहा। उसके उपासना प्रसंग में कुछ और कुछ कहते हैं। सैयद अशिषि सति यत पिपासति यन्न रमते वा रमते तास्य दीक्षा। अशिषि सति भोजन करना चाहता है खाना चाहता है जब पिपासति पानी पीना चाहता है जो कभी न रमते प्रसन्नता नहीं लगती इसे अच्छा नहीं लगता है ता अस्य दीक्षा वही उसकी दीक्षा है। जैसे कोई कर्म करने के लिए उपासना करने के लिए दीक्षा ग्रहण करके कुछ त्याग करके दुख का सहन करते हैं भोजन करना है तो भी नहीं करते पानी पीते नहीं कुछ समय तक तो नियम से रहना पड़ता है। इसी प्रकार ये उपासक कभी भी भूख लगी भोजन करना चाहता है पानी पीना चाहता है कभी अच्छा नहीं लगता है ये उसकी दीक्षा के समान हुआ। उसके बाद कभी भोजन करता है अथ यद अश्नाति यथ पिबति यद रमते तद उपसदे रेति जब खाता है पीता है किस प्रकार प्रसन्न सुख से रहता है ये उपसदे रेति एक उपसद है उसमें पयोव्रत दुग्ध पान कर रहना तो भूखा रहने के अपेक्षा दुग्ध पान कर रहते तो उसमें सुख है इसलिए ये सब जो खाना खाता है पीता है तो उपसद के समान व्रत करते आगे पय व्रत दुग्ध पान करते हैं अल्प स्वल्प भोजन करते हैं। जब व्रत अनुष्ठान करते हैं कुछ समय स्वल्प भोजन करते लघु भक्षण स्वल्पाहार स्वल्पाहार में दुग्ध पान थोड़ा दुग्ध पान कर लेंगे तो इसी प्रकार उसको ये खाता पीता तो उसके समान हो गया। अथ यद धसति यद जक्षति यन मैथुन चरती स्तुत शस्त्र देव तदेति जब कभी ऐसे उपासक कभी किस कारण हंसता है कुछ भोजन करता है अब कभी मैथुन कर्म पत्नी के साथ व्यवहार करता है स्तुत शस्त्र सूत्र के द्वारा जैसे गान किया जाता है इस प्रकार ही उसके समान हो गया। अथ यद तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्य वचनमिति तास्य दक्षिणा वो कर्म करते समय दक्षिणा देते हैं। यहाँ जो उपासना करता है उसकी दक्षिणा इस प्रकार कुछ तप करता है कभी दान करता है आर जब सरलता है हिंसा नहीं करता है सत्य भाषण करता है ये सब दक्षिणा के समान हो गया। धर्म पोषण करने से धर्म पुष्टि कर साधन्य है। तस्मादाहु सुष्यत्यसुष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेव अभवृत। ऐसा कहते यज्ञ में कोई कर्म करता है तो सोमरस निचोड़ेगा सोमरस जो निचोड़ लिया सोष्यति असुष्ट इसे कहते हैं। सुय प्राणी प्रसव अर्थ भी है सुय अभिषवे सुधातु है संस्कृत में सोमरस निचोड़ने के लिए सुधातु का प्रयोग किया जाता है और प्राणी जन्म करता प्रसव करता है तो सुधातु का प्रयोग करते हैं। सोष्यति एक दोनों अर्थ होता है कि सोमरस निचोड़ेगा अथवा प्राणी प्रसव करेगा असुष्ट सोमरस निचोड़ लिया अथवा प्रसव किया दोनों अर्थ होता है। तो इसी प्रकार जो कहते हैं पुनरुत्पादन एवास्य तन मरणम एवं अभवृत फिर पुनरुत्पादन जन्म मरने के बाद फिर जन्म होता है ये हो गया असुष्ट इति जन्म हुआ तन मरणम एवं अभवृत एक यज्ञ करते समय अंत में होता है अभवृत तो अभवृत हुआ यह इस प्रकार यहाँ पुरुष यज्ञ में अंत में जब मरण होता है तो अभवृत के समान हो गया। तदेतद घोर आंगिरस कृष्णाय देव की पुत्राय उक्त्वा वाचापि पाशैव सबभूव स्वंत वेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येताक्षि तमस्य अच्युतमसि प्राण संशितमसीति तत्रेते द्वे ऋचो भवतः। तदेतद यह यज्ञ दर्शन घोर नाम है घोर आंगिरस गोत्र से अंगिर गोत्र में उत्पन्न हुआ ऐसे कृष्णाय देव की पुत्राय उक्त वाच देव की पुत्र कृष्ण जो उनका शिष्य है उनको कह करके उपदेश करके आगे बताया वाच अपि पिपासैव सब भुव इस उसको कहने से इसके प्रभाव से पिपास रहित तो प्यास रहे भूख पिपास क्षुधा पिपास रहित तो हो गया। स्वंत वेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्यत जब अंतिम समय है ये तीन मंत्र कहते उसका जप करे प्रतिपद्यते से जप करे मंत्र अक्षितमसि अच्युतमसि प्राण संश्रितमसि इति ये तीन मंत्र है। अक्षितमसि अक्षितमसि मतलब अक्षित अक्षुण है क्षीण नहीं होता है अक्षत हो आदित्य में स्थित प्राण को एक करके से उनके कहता है आप अक्षय हो प्राण का अक्षय नहीं होता है प्राण व्रत पहले आया था तो क्षीण अक्षत हो अक्षितमसि। उसके बाद अच्युतमसि च्युत होता है स्वरूप से जो चित्त होता है च्युत च्यु अच्युत का स्वरूप से चित्त नहीं होता है परमात्मा का नाम अच्युत है इसलिए परमात्मा स्वरूप से च्युत नहीं होते शुद्ध चिन्ह मात्र जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ भी होने पर भी स्वरूप से च्युत नहीं होता है एक रस रहता है क्योंकि जगत की स्थिति आदि जितने उत्पत्ति आदि प्रलय माया से वास्तव नहीं कल्पित पदार्थ होने के कारण अधिष्ठान में कोई दोष नहीं होता है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल दिखने पर भी मरुभूमि गीली नहीं होती है इसी प्रकार ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रलय कुछ भी हो जाए अधिष्ठान में कोई संबंध नहीं उनसे अधिष्ठान हमेशा एक रूप अच्युत स्वरूप से चित्त नहीं होने से अच्युत है परमात्मा का नाम। यहाँ इस प्रकार आदित्य प्राण को कहते आप पहले का अक्षुण अक्षत हो और अच्युत असि और प्राण संसित मसी प्राण भी आप हो और संसित है सूक्ष्म हो सूक्ष्म आप तत्व आप हो प्राण प्राण और संसित मत सूक्ष्म तत्व है सूक्ष्म स्वरूप आप हो इति ये तीन मंत्र जप करें। तत्र एते द्वे ऋचो भवत इसी विषय में दो ऋचा मंत्र है इसकी स्तुति के लिए आगे दो मंत्र जो कहेंगे वो जप करने के लिए नहीं जप करने के लिए तो तीन हो गया क्योंकि आया एतत्रयम् प्रतिपद्यत आगे जो मंत्र है उसको यदि जप करना होता तो पांच हो जाता त्रयम् कहा इसलिए आगे दो है केवल इसकी स्तुति के लिए दो ही तीन ही जप करना यही हो गया अक्षितमसि अच्युतमसि प्राण संसितमसि ऐसा है। आदि प्रत्नसर एतस्य उद्वयम् तमसः परिज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति। आदिति प्रत्नसर एतस्य इतने कह करके आगे अंश है इसको केवल थोड़ा सा उद्धार कर दिया मंत्र में आदि प्रत्नसर एतस्य ज्योति पश्यन्ति वासरम् परो यद विद्यते दिवि ऐसा आता है परो यद विद्यते दिवि ऐसा है। आगे उद्वयम् तमसः परिज्योति पश्यन्त उत्तरम् सब पश्यन्त उत्तरम् दिवम् देवत्रा सूर्यम् इस मंत्र है। आदित एक ईत शब्द है ऐसे कोई अर्थ नहीं तो कर दिया आद का आकार में तो भी इसे अनुबंध कहते हैं। प्रत्न स का चिरंतन पुराण निधन चिरंतन पुराण रेत सह रेत होता है वीर्य कारण बीज होता है जगत के बीज जगत बीज पश्चिम ज्योति रूप है जो जगत का कारण है सदा सद रूप ज्योति है जगत के बीज है रेत हो गया बीज प्रत्न चिरंतन उसका कारण है चिरंतन जो कारण का बीज है ज्योति है ज्योति पश्यन्ति वासरम दिन में जैसे प्रकाश है इसे दिन के जैसे सर्वत्र व्याप्त प्रकाश रूप ब्रह्म को देखते ब्रह्म ही कारण है। परो यद इध्यते दिवि यद दिवि परो इध्यते द्विलोक के पर जो प्रकाश माने है वही सर्व सब का जगत का मूल कारण इसे देखते हैं। उद्वयम तमसस्परी और वयम तमस अज्ञान के पर हम उसको जानते हैं अज्ञान ज्योति पश्यंत जो अज्ञान से पर स्वयं प्रकाश ज्योति उसको जानते हुए उत्तरम स्व पश्यंत उत्तरम उसके उत्तर जो स्वरूप है उसको हम जानते हैं। देवम देवत्रा देव में देव होता प्रकाशमान है देव में सब देव में उपस्थित है सूर्यम अगन्म, उसको सूर्य कहते हैं। रसों का, सौ रश्मि का, प्राण का ही स्वीकार करने से उसको सूर्य कहते है। इस उत्तर स्वरूप जो परमात्मा है ज्योतिरुत्तमम इति, ज्योतिरुत्तम इति ज्योति प्रकाश रूप है, उत्कृष्टतम प्रकाश रूप है, उसको हमने अगन्म हमने प्राप्त किया, ऐसे करके उसकी स्तुति करते हैं। आगे मनोमय प्राण शरीर आकाश शरीर इत्यादि कहा था, अभी ब्रह्म के लिए उपासना करने के लिए एक प्रतीक उपासना आया। मनो ब्रह्मेति उपासित इत्याध्यात्मम अथाधि दैवतम आकाशो ब्रह्मेति उभयम आदिष्टम भवत्यध्यात्मम चाधि दैवतम च। मनो ब्रह्म इति उपासित, मनो ब्रह्म इति इस प्रकार उपासना करें, जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं, शालग्राम हो गया प्रतीक। इसी प्रकार मनो ब्रह्म इति उपासित, मन है ब्रह्म इस उपासना करे, मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे, इसको कहते प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना श्रुति में है, ये श्रुति सम्मत है। मन में ब्रह्म दृष्टि करके जिस उपासना करते है, इसे शालग्राम में मूर्ति में भी पर ब्रह्म दृष्टि करके उपासना होती है। और प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात। ब्रह्म प्रतीक ब्रह्म, मनो ब्रह्म, मनो ब्रह्म में मन तो भौतिक है, परिच्छिन्न है, अनात्मा है, वो ब्रह्म कैसे होगा? तो ब्रह्म को मन मानना है, मन को ब्रह्म मानना, तो उसमें व्यास जी कहते हैं ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात। निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करना चाहिए, उत्कृष्ट को निकृष्ट नहीं। बड़े में छोटा शब्द स्वल्प शब्द प्रयोग किया उनका तिरस्कार अपमान होता है, और छोटे है उनको सम्मान से कहा तो कोई हानि नहीं होती। इसे किसी को भी सम्मान से कहे, सामान्य व्यक्ति कोई छोटा हो भी यदि सम्मान से कहे तो कोई हानि नहीं, अपना कुछ हानि हो जाती है अथवा को मान्यता में कम होती, सम्मान में कम हो जाता, इसी बात नहीं। बोले कैसे ये करना चाहिए, सबको सम्मान करके अधिक करके कहना चाहिए, और फलप्रद भी होता है। बड़े को यदि निकृष्ट दृष्टि करे तो नाराज हो जाएगा, मालिक है कहेगा ये तो इनके मुंशी तो नाराज हो जाएगा, और कोई मुंशी द्वारा पाले कहेंगे ये तो मालिक है, अर्थात ये मालिक है माने ये चाहेंगे तो अभी वहां पहुंचा देंगे, ये सब काम करा देंगे, तो कौन से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात इसी में कहा गया, प्रतीक में जो उपासना करते मूर्ति में उपासना करते हैं, मन को लगाने के लिए प्रतीक चिन्ह आलंबन के लिए प्रतीक रखते हैं, उपासना करते हैं उसमें शालग्राम में स्नान चंदन तुलसी पुष्प आदि देते हैं और नैवेद्य चढ़ाते हैं, किन्तु उपासना करते समय क्रमशः पहले से नहीं होता है, किन्तु क्रमशः उसमें व्यापक परमात्मा दृष्टि करे। विष्णु शब्द का अर्थ शालग्राम में विष्णु की उपासना होती है, वेवेष्टि चराचरमिति विष्णु, विष्णु व्याप्त धातु ही, चर अचर सब के व्याप्त करने वाले ही विष्णु है। वेवेष्टि चराचरम, चर अचर सब के व्याप्त करने वाले है विष्णु भगवान, इसलिए चराचर व्यापक परमात्मा दृष्टि करके ही उपासना करें। प्रतीक उपासना में मूर्ति उपासना में जो नहीं जानते खंडन करते है, कहते इसको उपासना करते क्या है पत्थर है, पत्थर में चराचर व्यापक ब्रह्म दृष्टि करके विष्णु दृष्टि करके उपासना, व्यापक जो सर्वव्यापक परमात्मा ब्रह्म सर्वत्र है, प्रतीक में भी है। जो कहते इसमें कहां परमात्मा, पत्थर पत्थर है, पत्थर तो है परमात्मा, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, जो लोग मूर्ति पूजा खंडन करते उनसे पूछो, आप जिसको परमात्मा मानते हो आपके परमात्मा सर्वव्यापक है या परिचन्न है, क्या कहेंगे? सर्वव्यापक मानेंगे, परिच्छिन्न कहे तो पर ब्रह्म क्या है, परिच्छिन्न हो तो सावयव नित्य हो जाएगा। यदि सर्वव्यापक है क्या आपके परमात्मा ही मूर्ति के अंदर रह सकते, क्या रह सकते है? ऐसे बड़े व्यापक है छोटे स्थान में रह सकते है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान का अर्थ सब सामर्थ्य है, छोटे स्थान में भी रह सकते है या कहेंगे नहीं यहाँ जागा नहीं मुझे रहने के लिए, मैं तो मोटा हूँ, बहुत मोटा है छोटे कुर्सी दे देंगे तो नहीं बैठ पाएगा, तो बहुत मोटे हैं ना छोटे छोटे कुर्सी बैठ नहीं पाते हैं, दो कुर्सी हो तो भी जगह नहीं होता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ परमात्मा कहेंगे नहीं छोटे मूर्ति में मैं कैसे रहूंगा, मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो सर्वशक्तिमान होंगे, सर्वशक्तिमान है तो छोटे स्थान में भी रह सकते हैं। अरे बड़े स्थान में व्याप्त होकर रह सकते हैं तभी सर्वशक्तिमान है, तो छोटे मूर्ति में रह सकते हैं। और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उनको वही कहते परमात्मा कोई आकार नहीं। आकार नहीं तो सर्वशक्तिमान क्या कोई आकार धारण कर सकते है? कर सकते हैं नहीं कर सकते है? नहीं कर सकते, सर्वशक्तिमान नहीं है। सामर्थ्य नहीं तो क्या परमात्मा? यदि सामर्थ्य रूप धारण कर सकते है, भक्त के सामने रूप धारण कर प्रकट हो सकते है या नहीं हो सकते? जो तुमको तुम परमात्मा मानते हो, तुम्हारे परमात्मा का क्या सामर्थ्य है? कभी शिव रूप धारण कर प्रकट हो सकते है क्या? क्या कहेंगे? नहीं हो सकते तो सर्वशक्तिमान नहीं। अच्छा, शिव रूप धारण कर दे, विष्णु रूप धारण कर सकते है क्या? गणेश रूप धारण कर सकते है। अच्छा, तुम्हारे परमात्मा क्या देवी रूप धारण कर सकते है? एक एक रूप नहीं कर सकते तो सर्वशक्तिमान नहीं है। जो सर्वशक्तिमान है उसको क्या परमात्मा? परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। कोई भक्त ध्यान करता है, मुझे इसी रूप से दर्शन करना है, अपने मन से कोई रूप कल्पना करता है, इसी रूप से मैं देखना चाहता हूँ, क्या भगवान उसको जान सकते हैं या नहीं जान सकते? नहीं तो कैसे सर्वज्ञ होंगे? आज जान तो सकते किन्तु सर्व सामर्थ्य हो तो तद रूप से प्रकट हो सकते, सामर्थ्य तो उसके रूप से प्रकट हो सकते है। हाँ, इसलिए जितने रूप नाम रूप सब है, परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, उनका कोई रूप नहीं नाम नहीं, किंतु भक्त की इच्छा के अनुसार किसी रूप से प्रकट हो जाते हैं, लोकवती लीला कैवल्यम अनेक रूप धारण कर लेते हैं, तभी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। यदि विष्णु रूप धारण कर सकते, शिव रूप धारण कर सकते, देवी रूप धारण कर सकते, तो किसको तुम खंडन कर दो? कौन परमात्मा नहीं? देवी रूप धारण करे उसके अंदर परमात्मा रह सकते है? किसी राम रूप प्रकट करके उसके रूप अंदर परमात्मा रह सकते हैं? तो तुम्हारे परमात्मा कहाँ नहीं बोलो, किसका खंडन करते हो? इसी मूर्ति के अंदर रह सकते या नहीं रह सकते? नहीं रह सकते तो तुम्हारे परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, अपरिचिन्न हो जाएंगे। यदि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अपरिचिन्न परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है तो खंडन किसका करते हो? इसलिए जो नहीं जानते खंडन करते, मूर्ति के अंदर हम नहीं कहते, मूर्ति के अंदर ही है, बाहर भी है, अंदर भी है, सर्वत्र है। जहां मूर्ति में है तब दीवार में भी है, पेड़ में भी है, पत्थर में भी है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो मूर्ति में हम पूजा करेंगे तो परमात्मा पूजा का स्वीकार ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं तो कोई असमर्थ है, उधर बैठे, जैसे कोई व्यक्ति उधर बैठा है, इसके लिए भोजन बनाकर रखो, कहाँ खाएगा? दिल्ली में बैठा है, यहाँ भोजन बनाकर बैठो, खा सकता है? किन्तु परमात्मा ग्रहण कर सकते। इंद्र देव स्वर्ग में है, उनको यज्ञ में आवाहन करते, देवता को आवाहन जब करते वो आकर के ग्रहण करते ही एक स्थान, पचास स्थान, सौ स्थान में यज्ञ करे, सब इंद्रों को आवाहन करेंगे। इंद्र में सामर्थ्य है सब स्थान में जाकर के ग्रहण करने के लिए, देवताओं का सामर्थ्य है, ये विचार करें निश्चय किया गया, तब सब स्थान में उपस्थित होकर के ग्रहण कर सकते है, ये देवता में सामर्थ्य है। इसलिए प्रतीक उपासना प्रामाणिक है, किंतु ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे, व्यापक दृष्टि करे, परमात्मा में परिच्छिन्न बुद्धि नहीं करे। परिच्छिन्न रूप में हम मन लगाने के लिए परिच्छिन्न रूप कल्पना करके उसमें देखते सोचते ध्यान करते ठीक है, किंतु इतने ही परमात्मा है, और बड़ा नहीं है, बाहर नहीं, ऐसा नहीं, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने पर भी ऐसे छोटे रूप से प्रकट हो सकते है। हनुमान बड़े भी हमने नहीं, छोटे भी बन गए, मक्खी जैसे मन कर जा सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। सिद्ध भी कोई सिद्धि के सामर्थ्य से अनिमा लघिमा आदि सिद्धि है प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा में इतने सामर्थ्य नहीं, छोटा भी हो सकते, बड़े भी हो सकते, छोटे में रह सकते, बड़े में रह सकते, सर्वव्यापक, किंतु वास्तव स्वरूप है पूर्ण व्यापक अपरिचिन्न रूप है। उसका चिंतन करने के लिए प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, ये ब्रह्म सूत्र है। तो मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे, अथवा इति अध्यात्मम, ये देह के अंदर हुआ, अथवा अधिदेवतम, देवता में भी बाहर समष्टि में, आकाश ब्रह्म इति, आकाश में ब्रह्म बुद्धि करे, मन में ब्रह्म बुद्धि और आकाश में ब्रह्म, मन के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, मन भी सूक्ष्म है इसे मन में ब्रह्म दृष्टि करे, और आकाश भी सर्वगत है सूक्ष्म है तो उसमें भी ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। इति उभयम् अधिष्ठम भवति, अध्यात्मं च अधिदेवतम् च, अध्यात्म देह में और देवत्व समष्टि रूप से आकाश में भी ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। ये प्रतीक उपासना है, जिस प्रकार शालग्राम आदि मूर्ति आदि में उपासना, इस प्रकार ये भी, इसको कहते प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना की अपेक्षा उत्कृष्ट है आगे, किंतु शुरू से करना कठिन है अहंग्रह उपासना। जो मैं ब्रह्म हूं ऐसे चिंतन करना, समष्टि प्राण मैं हूं ऐसी चिंतन करना, अहम अस्मि, ये है अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना करने वाले ब्रह्मलोक जा सकता है। प्रतीक उपासना, प्रतीक में अहंग्रह उपासना नहीं होती है। सामान्य प्रतीक रखा, अरे मैं ब्रह्म ऐसे, मैं विष्णु, मैं शिव, ऐसे चिंतन नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया प्रतीक उपासक ब्रह्मलोक नहीं जा पाते हैं। अप्रतीकालंबना नयतीति बादरायण, ब्रह्म सूत्र में व्यास जी कहते हैं अप्रतीकालंबना नयति। अमानव पुरुष ब्रह्मलोक लेता है किसको? प्रतीक जिनका आलंबन है उनको नहीं। अप्रतीकालंबना था प्रतीक आलंबन वाले को छोड़ करके अहंग्र उपासना करने वाले को ब्रह्मलोक जा लेते हैं। जो अहंग्र उपासना और प्रतीक उपासना करने पर परमात्मा की कृपा होने पर, अंतकोण शुद्ध होने पर जिज्ञासा होती है अथवा अहंग्र उपासना करने के सामर्थ्य होता है, वेदांत श्रवण करने की इच्छा होती है, अंतकोण शुद्धि के लिए साधन है। और जो फल चाहते उनको फल भी मिल जाता है। जो मन रूप ब्रह्म है इसका पाद कथन करते कैसे ब्रह्म चिंतन करें? तदित चतुष्पाद ब्रह्म वाक् पाद प्राण पाद चक्षु पाद श्रोत्र पाद इत्याध्यात्म अतादिदेवतम अग्नि पादो वायु पाद आदित्य पादो दिश पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदेवतं च। ये चतुष्पाद ब्रह्म चार पाद वाला, ये पाद का अर्थ नहीं जैसे गो का चार पाद, एक कल्पना करते रुपया में चार पाद, रुपया के चार पाद मतलब रुपया के चार टुकड़ा नहीं, एक रुपया है वो चार पाद, चार एक अंश कल्पना करते हैं, ये चार इसके अंश कल्पना करते, पाद जैसे अंश भी अवयव नहीं, इसे अलग अलग कल्पना करते हैं। आत्मा का चार पाद आया, इसी प्रकार पादे, ये पाद क्या है ब्रह्म का? एक वाक एक पाद, प्राण द्वितीय पाद, चक्षु तृतीय, श्रोत्र चतुर्थ हो गया। ये अध्यात्म में मन में इस प्रकार चार, वाक प्राण चक्षु श्रोत्र, और आकाश में अग्नि पाद वायु पाद आदित्य पाद दिशा पाद, अग्नि वायु आदित्य और दिशा ये चार पाद है। ये तो उभयमेव आदिष्टम भवति अध्यात्मम चैव अधिदेवतम, जैसे आत्मा ब्रह्म मानव रूप ब्रह्म में और आकाश रूप ब्रह्म में ऐसे पाद अंश कल्पना करके सर्वव्यापक पर ब्रह्म चिंतन करे। वागेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद स्वग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्याय सशा ब्रह्म वर्चसेन एवं वेद। दो प्रकार का ब्रह्म, एक अध्यात्म एक अधिदेवत। जो वाग मन रूप जो ब्रह्म अध्यात्म, वाग एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद चार पाद कहा मन ब्रह्म का, वाग प्राण चक्षु सूत्र, तो पहले कहते वाग एव मनस ब्रह्म रूप ब्रह्म का चतुर्थ पाद एक पाद है। सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, जैसे मन रूप ब्रह्म का प्रथम पाद वाक है, इसी प्रकार आकाश रूप ब्रह्म का प्रथम पाद क्या है? अग्नि। तो ये जो अध्यात्म में एक पाद है आकाश रूप अधिदेवत, समष्टि अग्नि रूप एक पाद से स्व अग्निना ज्योतिषा, अग्नि जो अधिदेवत है ज्योति प्रकाश रूप है, उसी प्रकाश से भाति च तपति च, वही भाति भात दीप्ति अर्थ के प्रकाश माने और तप उष्ण भी करता है, भाति च तपति च, जो इसे उपासना करता है वो भी इस प्रकार भान प्रकाशमान हो जाता है और सबको तपाता है, सबसे उत्कृष्ट हो जाता है। भाति च तपति च किसे? कीर्तिया कीर्ति कथन स्तुति प्रशंसा यश भी कीर्ति है। ब्रह्म वचन हो गया, ब्रह्म स्वाध्याय वृत्त निमित्त तेज है, जो सदाचार है सत्कर्म करता है और स्वाध्याय करता है तन निमित्त के स्तर में तेज है, उसका नाम ब्रह्म वर्चस्व। और कीर्ति यश में भेद है, कीर्ति यश में तो कीर्ति स्वयं सुनता है, यश परोक्ष उसकी स्तुति सब लोग करते हैं, कहीं प्रत्यक्ष कहीं परोक्ष, तो दोनों प्रकार उसको प्राप्त होता है, श्रेष्ठ होता है। आगे द्वितीय पाद कहते हैं, द्वितीय पाद मन का क्या है? प्राण पाद, और अधिदेवता में आगे कहते प्राण एव ब्रह्म चतुर्थ पाद स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्चसेन ये एवं वेद। इस अध्यात्म मन में ब्रह्म दृष्टि उपासना करते है। द्वितीय पाद है प्राण और वायु रूप समष्टि के द्वारा ज्योति से भाति प्रकाशमान है। प्राण है अंदर बाहर है वायु और फल समय समान है भाति च तपति च कीर्ति यश ब्रह्म वर्चस से जैसे उपासना करता है। आगे तृतीय पाद तृतीय पाद कहा था चक्षु और यहाँ तृतीय पाद में क्या कहा गया था आदित्य चक्षुरेव ब्रह्म चतुर्थ पाद स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्चसेन एवं वेद। मन रूप जो एक पाद है चक्षु चतुर्थ सौ को चतुर्थ कहा चार में से चतुर्थ कौन है जिसे एक एक चतुर्थ चतुर्थ का एक दो तीन चार गिनती करते इसलिए भी एक पाद चतुर्थ शब्द से कहा गया। वो चक्षु रूप पाद जो उसके समष्टि रूप आदित्य रूप पाद से ज्योति से भाति तपति चक्षु का देवता है आदित्य आदित्य ही चक्षु रूप से प्रविष्ट है और जो इसे उपासना करेगा वह भी भाति च तपति च कीर्ति यश ब्रह्म वर्चस तेज से चतुर्थ पाद रह गया। श्रोत्रमेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद सद्दिग्भिरी ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्चसेन एवं वेद एवं वेद। श्रोत्र हो गया मन रूप ब्रह्म का चतुर्थ पाद एक पाद है और अधिदेवता समष्टि दिग् रूप पाद से चतुर्थ पाद से ज्योति से भान प्रकाशता है और तपाता भी है। ऐसे जो उपासना करता है वो भी सबको प्रकाश करने में प्रकाशमान हो जाता है तप करता है कीर्ति से यश से ब्रह्म वर्चस से जो इसे उपासना करता है यह एवं वेद दो बार कहा गया। इस उपासना समाप्ति हुई। आगे आदित्य ब्रह्म में पाद कहा गया अभी संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते है आदित्य में। आदित्य ब्रह्म का एक पाद अभी कहा गया था किन्तु आदित्य में ब्रह्म दृष्टि कर उपासना करने के लिए अभी आदित्य ब्रह्मे त्यादेश उपव्याख्यानम असदेव इदमग्र आसीत तत्सदासीत तत्समभव तदाण्डं निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभद्भिद्यत ते आंड कपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम। आदित्य ब्रह्म इत्यादेश ये आदेश उपदेश है श्रुति का। आदित्य ब्रह्म आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करके बिल्कुल आदित्य में परब्रह्म चिंतन करे प्रत्यक्ष आदित्य दर्शन करते है इसे उसमें परमात्मा बुद्धि करते आदित्य नारायण भी कहते ब्रह्म दृष्टि करे उपासना करे गायत्री उपासना करने वाले भी आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करते है। आदित्य प्रतीक है आदित्य में ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म सर्वव्यापक दृष्टि आदित्य में जैसे शालग्राम में विष्णु दृष्टि मन में ब्रह्म दृष्टि आकाश में ब्रह्म दृष्टि ऐसा आदित्य में भी ब्रह्म दृष्टि करे। पहले तो ब्रह्म में आदित्य के पाद रूप से कहा गया था आदित्य पाद समष्टि का चक्षु अध्यात्म अध्य देवते आदित्य पाद कहा था यहाँ केवल आदित्य में ब्रह्म बुद्धि करे यहाँ पाद ने आदित्य संपूर्ण आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करे। तस्य उपव्याख्यानम अब उसके व्याख्यान करते किस प्रकार उपासना करने के लिए थोड़ा कहते उसकी स्तुति के लिए असदैव इदम अग्रे आसीत ये इदम जो नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है अग्रे अग्रे क्या था पूर्व पहले किसके पहले सृष्टि के पहले सृष्टि के पहले क्या था असदैव आसीत असत ही था। इसी वाक्य को लेकर कोई कहता असत मतलब क्या है जैसे सस सिंह असत है खरगोश का सिंह तुच्छ इसी प्रकार सृष्टि के पहले असत शून्य तुच्छ था उसे जगत बन गया। वेदांति कहते ब्रह्म से है ब्रह्म का विवर्त जगत है ब्रह्म का विवर्त परिणाम नहीं विवर्त विवर्त और परिणाम में भेद है। तात्विक अन्यथा भाव होगा तो उसका नाम परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त स उदीरित यस तात्विक अन्यथा भाव परिणाम उदीरित एक श्लोक है यस तात्विको अन्यथा भाव परिणाम उदीरित अतात्विको अन्यथा भाव भावो विवर्त स उदीरित अन्यथा भाव अन्य प्रकार हो जाना तात्विक अन्य प्रकार हो जाता है तो उसका नाम परिणाम दुग्ध दही हो गया। और अतात्विक अन्यथा भाव कैसे, वास्तव अन्यथा भाव होता नहीं किन्तु लगता है, रज्जु सर्प जैसे लगती है भ्रांति काल में, जब सप्त जैसे भ्रांति होती है उस समय रज्जु सर्प रूप धारण कर लेती है या सर्प को पैदा करती है। अतात्विक अन्यथा भाव, वास्तव अन्यथा भाव नहीं है, अतात्विक लगता है सर्प जैसे लगती है रज्जु। तात्विक अन्यथा भाव हो गया, जैसे दुग्ध दही बन गया, आगे उसमें चाय बनाओ बन जाएगा, और रज्जु सर्प बन गया भ्रांति काल में, आगे रज्जु को लेकर के बांध सकते किसमें, क्योंकि जाकर देखे तो रज्जु है सर्प नहीं है, रज्जु है। इसलिए क्या हुआ, रज्जु जो सर्प हो गई थी अतात्विक अन्यथा भाव, उसको कहते विवर्त, अतात्विक अन्यथा भाव कहते परिणाम। यहाँ परिणाम बाद सांख्यादि लोग कहते सब परिणाम है, माया प्रकृति प्रधान का परिणाम जगत कहते हैं, और वेदांति कहते हो परिणाम नहीं होता है विवर्त होता है। ये ब्रह्म का विवर्त जगत है, ब्रह्म का विवर्त, विवर्त का अर्थ अतात्विक अन्यथा भाव, वास्तव ब्रह्म अन्य जगत रूप होता नहीं है ऐसे दिखता है, इसको कहते ब्रह्म का विवर्त हो गया जगत। और बौद्ध मत एक है, शून्यवादी कहते हैं मुख्य माध्यमिक विवर्तम अखिलम, शून्य से मेन जगत, शून्य का विवर्त इसे कहते हैं, शून्य ही जगत बन गया, असत पहले था वही जगत बन गया। विवर्त शून्य का ही कहते, हम कहते ब्रह्म का विवर्त कहते शून्य का, किन्तु शून्य तुच्छ था, तुच्छ को जानने वाला कैसे, कौन जानता है, यदि शून्य होगा उसको जानने वाला के नहीं तो प्रमाण क्या है, शून्य था में क्या प्रमाण है, तो जो जानने वाला है वो तो रह गया, शून्य कैसे होगा। और असत था पहले, सस्य विषाण था, कहां था, सस्य विषाण था, इसे प्रयोग होगा, जो असत्य है वो तीनों काल में काल के साथ उसका संबंध ही नहीं, अत्यंत तुच्छ, किसी देश में किसी काल में कहीं भी संबंध नहीं, वायु में रूप नहीं किन्तु रूप पृथ्वी जल तेज में है, हाथी यहां नहीं, हाथी जो अरण्य में है कहीं, हाथी पालने वाला उसके पास है, एकत्र समुद्र हिमालय यहां नहीं किन्तु अन्यत्र, किन्तु असत्य जो बंध्यापुत्र शशि विषाण किसी देश में किसी काल में किसी युग में, सत्ययुग में था क्या शशि विषाण, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए असत तुच्छ, असत्य भी दम अगर आते पहले था ये कैसे प्रयोग करेंगे, सृष्टि होने के पहले खरगोश का सिंह था, खरगोश भी नहीं था कुछ नहीं था उसका सिंह था, ये कैसे प्रयोग होगा, इसलिए असत्य विधम अगर आशित प्रयोग से सिद्ध होता है अत्यंत असत नहीं, तो असत शब्द क्यों प्रयोग किया, ये जो नाम रूपात्मक जगत दिखता है अभिव्यक्त दिखता है, सृष्टि के पहले अनभिव्यक्त था, अभी अभिव्यक्त हो गया, पहले अनभिव्यक्त था, अंधकार में कुछ भिन्न पदार्थ दिखते नहीं थे, प्रकाश होने पर सब दिखने लगे, प्रकाश होने के जो दिखने लगे अंधकार में कहां थे क्या सब थे वहीं थे, जहां दिखते वहीं थे, उस समय दिखता नहीं था अनभिव्यक्त थे, प्रकाश से अभिव्यक्ति हो गई, तत्सदाशित जो असत था वो तत्सदाशित, जहां असदेविदम अग्रासित श्रुति कहती है उसके पास ही कहे तत्सदाशित, जो असत है वो सत था, असत कह करके उसको सत कहते, अतः सत मतलब वस्तु तो था, तो असत का अर्थ तुच्छ होगा, असत का अर्थ अनभिव्यक्त, तभी सत कहेंगे, जो अनभिव्यक्त कोई पदार्थ है उसको सत कह सकते है, जो अंधकार में दिखता नहीं था अभी प्रकाश उसकी अभिव्यक्ति हो गई, अंधकार में सदरूप था या असत था, सत नहीं दिखता तो अनभिव्यक्त था तो असत कह देते, किन्तु वस्तु तो सदरूप था या नहीं था, तभी तो सद है, नहीं तो था तो सद हुआ, सात ही तो था, सदाशित तत् समभवत, वही सम्यक रूप हो गया, तद आंडम निरवर्तत, ये अंड स्वरूप हो गया, एक अंड हो गया ब्रह्मांड, तत् संवत्सर से मात्रा मसेत, एक वर्ष तक इसे रहा, त निरभद्यत, ये जो अंड रूप हुआ फट गया, दो कपाल जैसे अंड कपाल है ब्रह्मांड, दो कपाल हो गए, रजतम च सुवर्णम च भवताम, एक कपाल रजत है एक कपाल सुवर्ण, दो भाग होगी, असत का था नाम रूप व्याकृत नहीं था, सारे जगत जैसे तेल में तेल अनभिव्यक्त होकर के था, पीस निकला, नहीं था तो पिसने से कैसे निकलेगा? ऐसा होता तो तेल क्यों ला कर पिसते, रेत मिट्टी लेकर पिसो तेल निकले, तो तेल वहां था। इसी प्रकार यहां सब असत जो दिया वस्तु तो असत नहीं, असत जैसे था। अब ये ब्रह्मांड दो कपाल रजत सुवर्ण हो गए। तद यत रजतम संयम पृथ्वी यह सुवर्णम साध्यौर यह जरायु ते पर्वता यह दुर्लभम समेघो निहारो या धमनयस्तानद्यो यद वास्ते मुदकम स समुद्र। जो ब्रह्मांड दो कपाल हो गए, दो हो गए, तद यद रजतम संयम पृथ्वी, जो कपाल में दो कपाल में एक रजत रूप कपाल हो गया, वो रजत रूप कौन है? सायम पृथ्वी। और सुवर्ण भी एक कपाल था, वो क्या है? या सुवर्णम साध्यौ स्वर्ग हो गया, देव हो गया। पृथ्वी कहन से, पृथ्वी से उपलक्षित सारे नीचे, सारे सात पाताल भी आ जाएगी, ये नीचे वाले भाग हो गया। और देव हो गया सुवर्ण कपाल, सुवर्ण कह से देव से ऊपर रखित ऊपर कपाल है, ऊपर कपाल से उसमें महजन तपस्य सब ब्रह्मांड में आ गई, बीच में अंतरिक्ष है। यह जरायु ते पर्वता, इसी जो ब्रह्मांड में जरायु, जरा गर्भ का परिवेष्टन कहते सूक्ष्म है, जरायु ते पर्वत गर्भ का परिवेष्टन है, जरायु स्थूलम अंडर दो टुकड़ा हो गया, वो पर्वत हो गई, जैसे अंडा में दो होता है तो कठिन अंश वो पर्वत हो गई, जो दोनों तरफ थे कठिन अंश वो हो गए पर्वत। यद उल्बम सूक्ष्म, जो उल्ब है सूक्ष्म, गर्भ का परिवेष्टन सूक्ष्म एक रहता है, वो मेघ, मेघ के साथ निहार, मेघ के साथ मेघ और निहार हो गया कोहरा, वो कोहरा हो गया, गर्भ में परिवेष्टन सूक्ष्म था, कोहरा हो गया मेघ के साथ। और या धमनय, उसमें जो धमनी सिरा थे उस नदी हो गई, यद वास्तव उसके जो बस्ती में होने वाले वास्तव मूत्र होता है, जो बस्ती में था उदकम वो समुद्र हो गया। अथ यद तद अजायत सोसा वादित्यस्तम जायमानं गोसा उलु लघु अनुदत्तिष्ठन सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामास्तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलु लघु अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा। उससे जो दो टुकड़ा होने से ब्रह्मांड दो भाग हो गया, जो उत्पन्न हुआ गर्भ से सो असो आदित्य वही आदित्य हो गया, आदित्य उत्पन्न तम जायमान, आदित्य जो ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ जायमान घोषा, घोष शब्द होने लगे। परमात्मा का यह प्रथम पुत्र जैसे उत्पन्न हुआ, जब उत्पन्न होता है तो सब प्रसन्न होकर सब शब्द होने लगे, अनु उदतिष्ठन सब शब्द होने लगे, सारे स्थावर जंगम सब शब्द करने लगे, सर्वांच भूतानि सारे भूत भी उत्पन्न प्रसन्न हो गई, सर्वे च कामा सारे काम काम्य उनकी भी उत्पत्ति होगी सारे, और तस्मात तस्य उदयम प्रति, इसलिए भी जैसे पहले सूर्य रूप आदित्य ईश्वर के प्रथम पुत्र उत्पन्न होते समय बहुत शब्द हुआ था, स्थावर जंगम सारे पुत्र जन्म होने पर सब कुछ शब्द करने लगे, सारे काम सारे विषय प्रकट हो गए। इसी प्रकार अभी भी जब सूर्य उदय होते हैं सर्वाणि च भूतानि सर्वे काम उदयम प्रति प्रति आयनम प्रति घोषा, सब उसकी अपेक्षा करते सूर्योदय के प्रति, उदयम प्रति प्रत्यायनम प्रत्यायनम बार बार आते हैं उसके प्रति राहत में सब प्रतीक्षा करते हैं और शब्द करते, सूर्य उदय जो होता है सब घोष शब्द करने लगे, पशु पक्षी उठ करके वो शब्द करने लगे, रात में सब सो जाते हैं, सूर्य उदय समय आया पहले आने के पहले से शब्द शुरू कर देते पशु पक्षी, मनुष्य को उठाते तुम पशु जैसे नहीं सो जग जाओ, पशु कहते मनुष्य को तुम पशु से सीखो, पशु उठ जाते हैं बहुत सारे, मनुष्य तो सूर्योदय के बाद जगते, कोई कोई पशु क्या कहते सूर्योदय के बाद पहले उठ जाते, उठकर कहते मनुष्य को पुकारते तुम पशु हमको पशु कह दो, हम तो जगे तुम सोए हो कौन पशु बताओ, सब जग कर गए उठते सर्वे काम सब कुछ प्राप्त होते, उदय के प्रति सब प्रतीक्षा करते हैं। स एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्मैति उपास्य अभ्यासो यदेनं साधव घोषा आच गच्छे रूपच निम्रेण निम्रेडेरन स एवं ऐसे जो आदित्य ब्रह्म उपासना करता है अभ्यास का तो शीघ्र हे उसको यद एनम साधव घोषा शब्द उसको प्राप्त होते किंतु साधव घोषा साधु शब्द का अर्थ पाप संबंध रहित शब्द पुण्य संबंध स्तुति ऐसे पाप करे कोई कर्म करेगा तो सब लोग कहेंगे पापी आया चोर आया ऐसे शब्द कहेंगे चित्कार करेंगे सुनने पर उसको कष्ट होगा ये पाप कर्म ऐसा नहीं साधु शब्द को प्राप्त कर होता है जो इसे उपासना करता है अर्थात सब उसकी स्तुति करते हैं आग छेर उपचन आकर के उसके उपभोग हो जाते सुख देते हैं उसको सुख देते हैं ऐसे जो उपासना करता है सुखी होता है सत्कर्म करने पर लोग उसकी स्तुति करते तो सुखी होता है। अभी संवर्ग विद्या का प्रारंभ होगा। वायु और प्राण ब्रह्म में पाद रूप से कहा गया था, प्राण को कहता है कि पाद और वायु को कहता अधिदेवता पादपुर में आया था। अभी उसको साक्षात वायु प्राण को एक करके उसको ही उपासना करना ब्रह्म दृष्टि करके उसको सुख से ज्ञान होने के लिए के आख्याय के रूप से कहते विद्या का प्रदान विद्या ग्रहण के लिए विधि दिखाने के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक विद्या का ग्रहण होता है। जितने श्रद्धा हो तब तितने ग्रहण होता है। और अन्नदान एक दान है, अन्नदान महादानम विद्यादान अतः परम। अन्नदान भी बड़े उत्कृष्ट दान है, उतने मात्र से भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। और अनुद्धतत्व उद्धत नहीं अहंकार का त्याग करना पड़ता है। जितने नम्र हो उद्धत नहीं हो अभिमान का त्याग करे इतने ही उत्कृष्ट साधक होता है। विद्या प्राप्ति के प्रति ये सब साधन ये दिखाते है, श्रद्धा अन्नदान अनुद्धतत्व आदि ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसको दिखाने के लिए आख्यायिका है। ओम जान श्रुतिरह पौत्रायण श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस स सर्वत आवसाधान मापयांचक्रे सर्वत मे अन्नमत्स्यन्ति। जानश्रुति जनश्रुत का अपत्र जानश्रुति, जन्मेजी की श्रुत प्रसिद्ध है उसका पुत्र का नाम जानश्रुति। पौत्रायण कोई ऋषि थे उनका नाम पुत्र, पुत्र का पौत्र हो जाए पौत्रायण, पुत्र के पुत्र पौत्रायण। श्रद्धा देय श्रद्धया आदेव यस्य जो दान करते थे श्रद्धा पूर्वक दान करते समय अत्यंत श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम अश्रद्धा से नहीं श्रद्धा पूर्वक तो श्रद्धा देय बहुदायी बहुदातुम शीलम यस्य स बहुदायी स्वभाव उनका दान करना बहुत देने वाले बहुदातुम प्रभुतम दातुम शीलम से बहुदायी बहु दान करने वाले बहुपाक्य बहुत भोजन पकाते भोजन बहुत बना करके पका करके रोज रोज रखते थे। जो आएंगे भोजन चाहते उनको भोजन देना तो अपने घर पर सब लोग नहीं आ पाएंगे तो वो भी क्या करते थे सर्वत आवसतान मापयान चक्रे सब स्थान में रास्ता में तीर्थाटन करने जाते विभिन्न स्थान में मकान बनाए बना करके वहां अन्न की व्यवस्था करते अन्न दान करे सब स्थान में मकान रहने की व्यवस्था और वहां भोजन बनवा करके देते थे जो भोजनार्थी रहे भोजन करे। उनका उद्देश्य था सर्वत एवं मैं अन्न मत्स्यंती जहां भी हो मेरे ही अन्न खाएंगे। इस अभिप्राय से जिसके पास बहुत होता है यही उसके पास सामर्थ्य है। सब लोग तो नहीं कर सकते, बहुत प्राप्त होता है किसी पुण्य के कारण और परमात्मा की कृपा से। जो प्राप्त हुआ किसी बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ परमात्मा की कृपा से उसका सद उपयोग नहीं करके जो मर जाते हैं पाप ही लेकर के जाते हैं। धन तो कोई लेकर के नहीं जाता है, धन इकट्ठी बहुत कर लेते हैं जाते समय कोई नहीं लेकर जाता है। और जो कर्म करते हैं धन कमाते समय पाप कर्म करते उसको यहां रखकर जाएंगे या लेकर जाएंगे, वो लेकर के नहीं वो इसको लेकर के जाता है। पाप कर्म तो साथ में जाएगा वो आगे जाएगा खींच करके लेगा, कर्म उसको खींच कर लेगा इधर आओ। धन संपत्ति कुछ नहीं करे वहां रह गया, इसलिए जो प्राप्त होता है विवेकी को उसका सदउपयोग करे। इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त है ये भी कम नहीं है, इसका भी सदउपयोग करे, नहीं तो एक बार छूट गया तो कहां जाएगा। उनका ये उद्देश्य था अपने घर में भोजन पकाते, बाहर भी विभिन्न स्थान में मकान बना करके भोजन की व्यवस्था करते, सब मेरे भोजन करेंगे। इस अभिप्राय से उनका स्वभाव था बहुपाक्य आस, सर्वथ मकान बना करके यही सब जो परंपरा है, धर्मशाला बनाते थे, विभिन्न स्थान में भोजन करते, लोग जाते हैं, चार धाम यात्रा करते, यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री केदार बद्री, अभी तो थोड़े रास्ता आदि हो गया, पैदल जाते थे चल करके, रास्ता गाड़ी आदि की व्यवस्था नहीं थी, चल कर जाएंगे, कितने भोजन लेकर के जाएंगे खाने के लिए, जहां जाएंगे वहां भी जंगल में पहाड़ में लोग होते हैं, बड़े कठिन से रहते हैं, किंतु कोई जाने वाले को भिक्षा देते हैं, लोग जाते हैं तो जितने भी धन संपत्ति होने पर सबको नहीं मिलता, किंतु पहले से जाते थे तो वहां भी लोग रहते, बिक्री करते, छोटे छोटे दुकान कर देते, और साधु लोग जाते हैं प्राप्त नहीं होता है, और कुछ होने पर शौच नहीं मिलेगा, तो इसे करके उनको व्यवस्था करने के लिए बनाते थे। एक काली कमली बाबा हुए थे, चट्टी बनाए विभिन्न स्थान में रहने के लिए व्यवस्था, अभी सब टूट गए, वहां कोई रहते नहीं, अभी धीरे धीरे बनाने लगे तो बड़े बड़े बन गया, तो वहां रहेंगे, भोजन करेंगे, उनको सब देते थे, आटा दाल तेल आदि जो नमक आदि मिर्ची मसाला थोड़ा दे देंगे, भोजन बनाकर खाओ, ऐसे करके लोग आते थे। तो ये सब जो करते थे साक्षात तो बड़े बड़े लोग धनी लोग को कराते थे, और कोई बाबा इस प्रकार सबसे ले करके वहां कराए हैं, अभी भी व्यवस्था है, जो लोग जाते हैं पैदल जाते हैं उनसे लेकर के रेशन लेकर के भोजन बनाकर खा जाते हैं, और कोई कोई भी गांव से भिक्षा करते हैं, बड़े आचार्य अपने महाराज जी तीर्थ स्वरूपम तीर्थ उनके नाम तीर्थ जी कहते थे, वो योगवासी तो पढ़ाते थे, भगवान राम जी तीर्थाटन में गए, तीर्थाटन करने के बाद जब आए उनका वैराग्य हुआ, जब वैराग्य हुआ किससे बात नहीं करते, चुपचाप रहते है, बड़े से कुछ क्या सोचते रहे, क्या हो गया दशरथ जी को भ्रम हो गया, क्या ये राम को क्या हो गया, क्या कुछ कहेंगे भूत प्रेत अंदर घुस गया, या कुछ दिमाग खराब हो गया, या कोई चीज सोच रहा है, क्या इसके मन में है, क्या हुआ, क्या चाहता है, पूछने पर कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठ कर सोते। फिर गुरु वशिष्ठ को बुलाए, वशिष्ठ जी गुरु को बुलाए कि देखिए क्या ऐसे हो गया, राम तो भगवान उनका अत्यंत प्रिय थे और पिता के भक्त थे, अभी ऐसा रहता तो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप चुपचाप इसे रहता है, खाना पीना भी कम हो गया, क्या हो गया, तीर्थाटन से क्या हुआ। तीर्थाटन जो करते हैं, तीर्थाटन से वैराग्य होता है, तीर्थाटन करते हैं जिस प्रकार करना चाहिए इसे करने पर वैराग्य होता है। तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में यदि कहीं जल स्नान करने का है अवश्य स्नान करना चाहिए, स्नान करने के लिए बहुत सारे में जिनको पता नहीं, गंगा जी हम देख रहे जाकर के पहले ही पैर अंदर घुस जाते हैं, तीर्थ में पहले ही पैर लगाना उचित नहीं, पहले प्रणाम करो, कुछ सामर्थ्य के अनुसार कुछ अर्पण करो, प्रणाम करो, उसको लेकर सिर में लगाओ, फिर प्रार्थना करके जाओ। अब तीर्थ है, देवी है, मंदिर है, जैसे पहले ही वहां पैर लग दिया ये पाप होता है, और स्नान कहेंगे अपरिष्कार परिष्कार अपरिष्कार विचार नहीं करना, पवित्र जल स्नान करो, कितने महापुरुष स्नान किया है, तीर्थ है स्नान करना चाहिए, बाकी सब व्यवस्था होनी चाहिए, आजकल कोई करे नहीं करे, नहीं तो सफाई भी करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ऐसे तो स्नान करना है, रह करके दर्शन करे, आरती आदि दर्शन करे, और वहां नियम से रहे, नाम तीर्थाटन में जाएंगे और खान पान करेंगे कुछ भी निषिद्ध तो क्या होगा। तो जैसे करे तो जैसे भक्ति अधिक करने पर संसार से वैराग्य होता है, जो भक्ति करते हैं अपने को भक्त कहते हैं, किन्तु भक्ति करने के बाद यदि वैराग्य नहीं हुआ और भक्ति नहीं हो रही है, केवल भक्तत्व तो ख्यापन करके सम्मान लेना है, बहुत लोग अपने को भक्त कहलाते हैं, इतने करोड़ जप क्या, इतने जप क्या कहेंगे, लोग सम्मान करेंगे, किन्तु भक्ति की भक्ति करने से वैराग्य होना चाहिए, भक्ति ईश्वर के प्रति आसक्ति, ईश्वर के प्रति आसक्ति जिसकी बढ़ती है संसार में आसक्ति बढ़ेगी, संसार में आसक्ति बढ़ेगी तो ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी, ईश्वर में भक्ति बढ़ेगी तो संसार में आसक्ति घटेगी, वही वैराग्य है, आसक्ति का अभाव वैराग्य है, तो भक्ति। राम जी को ऐसे हुआ तो गुरु वशिष्ठ जी आकर कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तभी वैराग्य हुआ करके, और उनको उपदेश फिर ज्ञान का उपदेश वशिष्ठ ने किया, उसका नाम हो गया योग वशिष्ठ। जो वाल्मीकि रामायण है उसका उत्तर रामायण कहते हैं, वही वाल्मीकि द्वारा रचित इसे माना जाता है। वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश किया, उसका नाम हो गया योग वशिष्ठ। तो ये ज्ञान का उपदेश किया, वैराग्य होने पर तो तीर्थाटन करने पर ऐसे वैराग्य होता है। तो महाराज जी पढ़ाते थे योगवासी, तो भक्त लोग उसे बैठे थे, कहे महाराज जी तीर्थाटन करें, राम जी को वैराग्य, हम भी तीर्थाटन करेंगे। कहे चलो, दूसरे दिन चल पड़े। उनके साथ निर्मला के पति भी थे, एक हमारे भक्त उनके थे, और कुछ लोग बहुत पुराने नहीं, कुछ एक महात्मा थे, सात आठ कुछ महिला भी थी, आठ दस बार हो गए गए। कैसे? पैदल चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री, पैदल जाए करके दर्शन किया। और बड़े सेठ एक थे, बहुत समर्थ है, वो भी पैदल गए थे। वो भी कहते तो अभी वो नहीं समाप्त हो गए, बोलते थे मैं भी महाराज जी के साथ गया था, और मैं भी ऐसे पकड़ कर जाता था। एक महात्मा थे च्यवनपुरी करे, बहुत विरोध महात्मा, वो भी गए घी के टिन पकड़ कर उठा कर गए। कोई कहे घी लेकर जाएंगे तो वो भी हम लेंगे, लेकर गए। तो ऐसे दर्शन किए थे चार धाम। तो जो जाते हैं तो कुछ लेकर गए, और कुछ कुछ कहीं मिलता है तो लेते हैं। तो इसे सर्वतः जो अन्न देने के लिए व्यवस्था करते हैं उनको बहुत लाभ पुण्य होता है। तो ये फिर स्वभाव उनका था, इसे सर्वत्र मेरा अन्न खाए, सर्वत्र रहने के लिए स्थान बनाते थे। तभी सब धर्मशाला आदि की परंपरा है, उसके अनुसार भूताने रहते हैं, भोजन व्यवस्था करने वाले करते। अभी भी जो साधु महात्मा को भोजन मिलता है, ऐसे मिलता है, वो जो करते हैं ना कुछ नहीं करते तो उनको भोजन मिल जाता है। तो अन्नदान, तो अन्नदान करने पर दान जो कुछ करते हैं उनको लाभ क्या होता है, जिनको मालूम नहीं लगता क्या हो जाता है, क्या होता है, विभिन्न प्रकार कहते हैं कि जो करते हैं परमात्मा जानते हैं कौन क्या करता है। सत्कर्म कोई कुछ करता है तो परमात्मा को पता चलता है क्या? किसको नहीं बताए तो? किसको बताना की आवश्यकता नहीं, करते पता नहीं चलता है, किंतु जानने वाले जो परमात्मा जानते, फल तो परमात्मा ही देते है। फलम अत उपपत्ते है, ब्रह्म सूत्र फलम अतः, ईश्वर से फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वही फल दे सकता है। हमको पता चल गया तो हम उसको क्या देंगे? जिस जो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है फल देते हैं, तो फल मिलता है। और जब परमात्मा कृपा करते हैं, किस प्रकार कृपा होती है ये भी मनुष्य नहीं जान पाता है। ऐसे सोचता है हमको क्या कुछ नहीं, जो परमात्मा भक्ति करता है वो तो फल के लिए सोचना है, मुझे इसका फल मिल जाए। भक्ति करता है, उपासना करता है, कर्म करता रहता है, फल नहीं चाहता है। फल जो चाहता तो मजदूरी करता है, रोज काम क्या हमारा मजदूरी दे दो, अब तुम्हारा काम कितने हुआ नहीं हुआ, हमें दिन भर काम क्या मजदूरी दे दो, चल जाता है। आगे कुछ दीवार टूट गया कुछ हो गया तो हम क्या करें, हमने तो काम किया। ये मजदूरी लेने वाले नहीं होना चाहिए। फल जो चाहता है इसे फल का भक्त होता है, ईश्वर का भक्त नहीं होता है। ईश्वर का भक्त फल नहीं चाहेगा, जो फल चाहता है वो फल का भक्त है, ईश्वर का भक्त तो फल का भक्त नहीं हो, ईश्वर का भक्त होने से अर्थात कुछ करते समय फल की इच्छा नहीं करें। फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा क्या? वो परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते जो कुछ नहीं चाहता है, जो नहीं मांगता है। पिता भी पिता माता भी देखते, कोई बहुत मांगता रहता है लेकर फालतू खर्च करता है, उसको देने के लिए सोचते है कितने सो मांगा तो उसको 50 देंगे 10 देंगे। जो नहीं मांगता है बिल्कुल कुछ नहीं करता है, उसको प्रेम कर बुला कर देते, मना करने पर ही उसको दे देते, रख दो जबरदस्ती पकड़ में रख देते। ऐसा होता है, किसका स्वभाव है बहुत मांगता है, किसका स्वभाव नहीं करता, जो दे लिया नहीं तो नहीं, खर्चा नहीं करता रहता तो उसको देते ले लो ऐसे कर लो खर्चा। तो परमात्मा इस प्रकार देखते जो नहीं मांगता है उसके ऊपर प्रसन्न होते है। अब बल्कि कुछ नहीं लेता है तो परमात्मा क्या देंगे? जो जिसको ठगना होता है ना, ये ले लो वो ले लो। बच्चा रोता है दूध पीने के लिए, माँ कुछ कार्य व्यस्त है उसमें खिलौना डाल देती, खिलौना से बच्चा उठ करके रोना बंद कर देता, उसको लेकर के मुख्य मैसेज करता है, इसे करने से क्या होगा, फिर फेंक देकर फिर रोता है। रोता है तो माता क्या करेगी, उसको लेकर दूसरे खिलौना डाल दिया। बच्चा रोता है, खिलौना के कुछ दिखता है तो बच्चा तो बच्चा है, भूल जाता है किस लिए रोता था, भूख लगती थी रोता था, खिलौना आ गया ओ रोना भूल गया, भूल गया, कभी कभी उसको लेकर पकड़ता है, बड़ा खुश हो जाता है कुछ मिल गया हमको। थोड़ी देर के बाद फिर जब आगे कोई खिलौना नहीं लेता है, फिर माता सब काम छोड़कर बच्चे को लेती, नहीं तो कुछ होता है तो खिलौना डालकर अपने में आता है। आप पहले सब काम करते थे बहुत है तो भी समय नहीं होता था, तो जिस प्रकार ठगने के लिए खिलौना डाल देते हैं, इसी प्रकार जो चाहता है कुछ परमात्मा कुछ दे देते है बस। जो कुछ नहीं लेगा तो बच्चा तो कुछ नहीं लेता है, माता सब काम छोड़ करके बच्चे को फिर उठा कर लेती, स्तन पिलाती, दूध पिलाती। जो कुछ नहीं लेता है माता सब काम छोड़ करे उसको। इसी प्रकार जो भक्त तो कुछ नहीं चाहे, कुछ नहीं लेता है, परमात्मा उसके सामने प्रकट होते हैं। अब कुछ नहीं चाहे तो क्या करेंगे, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त तो परमात्मा चाहते जो हमको चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए ऐसा चाहते हैं। इसलिए कुछ करते समय इसके क्या मिला हमको, कुछ मिल जाए क्या लाभ, ये सोचना नहीं। कर्म जो करता है करने वाले करते, अपने कर्तव्य करना है हम करते हैं। हमने किया कुछ नहीं सोचा, ये सोचो कि परमात्मा की कृपा से कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात है। कुछ सत्कर्म हो गया तो होना ही चाहिए, कर लिया तो क्या बड़ा है, करना तो कर्तव्य है। और वो कहा हिरिया देयम, कोई देते रहता तो लज्जा से, मैं तो बहुत दे सकता हूं, इतने देता तो कम हुआ, बहुत देने पर ये अभिमान नहीं करे, सब लोग तो कम देते, मैं अधिक दिया ही नहीं, मैं और अधिक दे सकता हूं, ये तो मेरे लिए कम है, तो लज्जित होकर दे, ये भावना करके, तो इसमें कुछ मैंने किया ये भावना नहीं हो। तो ऐसे करके वो जब देवता लोग कृपा करते, परमात्मा कृपा करते, किस प्रकार कृपा करते यह स्पष्ट हो जाता है। अथ हंसा निशाया मति पेतु तद्धैवं हंसो हंसम अभिवाद हो ऐ भल्लाख्य भल्लाख्य जान सुते पौत्रायण से समम दिवा ज्योतिरातम तन्मा प्रसांक्षी तत्वा प्रधाक्षीरिति। वैसे राजा तो कर्म करता है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में कोई छाती के ऊपर लेता है, गर्मी के समय ऐसे पहले हमेशा व्यवस्था हम नहीं होती तो इसे छाती के ऊपर गर्मी में लेटते हैं, घूमते बैठते हैं। अभी भी कोई अत्यधिक गर्म होने पर ये सब छोड़कर थोड़ा खुला स्थान में जाते हैं। जो लोग बहुत व्यवस्था है, जो जहां बहुत गर्मी है ऐसी में रह रहकर थक जाते हैं, सब पंखा घुमाते हुए थक जाते, गर्म होता है, थोड़ा खुला स्थान में जाना चाहते हैं, नहीं तो हमेशा बंद रहते जैसे बंदी में रहते, ऐसे फिर थोड़ा समय हाथ रह गए, थोड़ा हाथ में आराम कर रहे थे। जब कोई सत्कर्म करता है, परमात्मा कृपा करते हैं, किस प्रकार कृपा करते है, वो देवता लोग प्रसन्न होकर के इनके सत्कर्म से दान करते है, तो अन्न दान करते, सब की व्यवस्था करते है, बहुत करने पर वो खुश हुए, खुश होकर क्या करेंगे, उसका कुछ उपकार करेंगे। जो भक्त है परमात्मा दिखते उसका कुछ कल्याण हो, और भक्त में अभिमान हो जाए तो परमात्मा क्या करेंगे, अभिमान को पुष्ट करेंगे या नष्ट करेंगे। हाँ, वो सोचेगा मेरा ये मैं बहुत बड़ा हूं, कभी मन में थोड़ा अभिमान हो ही जाता है, तो भगवान सत महापुरुष भी अभिमान को नष्ट कर देते हैं, अभिमान को पुष्ट नहीं करते। जो कुछ साधु लोग ऐसे थोड़ा स्तुति करते हैं, कुछ भक्त लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते बाबा बहुत अच्छा है, ये लोग नाम लेकर कहेंगे, स्तुति करेंगे, बड़े बड़े आशा करके कहेंगे। तो जो लोग वस्तु तो सन्मार्ग में नहीं है, ऐसे कुछ स्थान में थोड़ा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, स्तुति से खुश हो जाते हैं, बस वो बाबा बहुत अच्छा है, ऐसे स्तुति करने वाले नाम लेकर स्तुति करेंगे, करते हैं, यहां भी करते होंगे, सुना होगा किस किस नाम लेकर, सबका नाम दो तीन चार पांच नाम लेकर के इतने बढ़ाएंगे, और कोई कोई लोग खुश हो जाते हैं। किन जो वास्तव संत है, ऐसे मुख में स्तुति करना या कोई अच्छा नहीं होता है, मुख में स्तुति करते तो शत्रु की स्तुति की जाती है, मुख में जो सन्मार्ग में है अपने प्रिय है, मुख से लेकर स्तुति करना कुछ अच्छा नहीं होता है, तो बल्कि उसका कोई अहंकार है, कमती है, उसको कैसे नष्ट करना ये देखना चाहिए, कहां उसकी कमजोरी है, दुर्गुण है, कमती है, उसको हटाओ। अहंकार यदि है तो अहंकार को कैसे नष्ट करना, कहा अभिमान होकर नष्ट करेंगे। तो देवता लोग के भी ईश्वर भी जो कृपा करते हैं, उसके थोड़ा सा दान करने से थोड़ा सा तो कुछ मन में भावना आ गया होगा, अथवा दान तो करता है किंतु आगे उसकी क्या कल्याण कैसे होगा, आगे क्या करना चाहिए वो नहीं जानता है। दान बहुत करने के बाद अंतकोण शुद्ध होता है, अभिमान हो तो नष्ट करेंगे, अभिमान नहीं हो तो भी खाली दान करते करते बहुत दान किया किन्तु उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए कुछ उसका उपासना गुरु की प्राप्ति कराएंगे परमात्मा। कोई दान बहुत करता है, सत्कर्म करता है, सत्कर्म करता रहता है तो परमात्मा कृपा करेंगे तो क्या करेंगे, अभी किसी प्रकार उसको सद्गुरु प्राप्त कराएंगे। तो देवता लोग ऊपर जो उड़कर जाते हैं, उड़ने पर तदैव हंसो हंसम अभिवाद, ये हंस उड़कर अतिपे निशायम अतिपे तु, हंस उड़कर उसके ऊपर चल गए, उसके ऊपर उड़कर जब जाते हैं, पीछे वाला हंस आगे वाला को बोलता है, हे ओ बधाई भल्ला क्या भलाक्ष भलाक्ष तुमको दिखता नहीं, कहाँ जाते हो? भलाक्ष अब तुम्हारे आंख खराब हुआ क्या? कुत्सित कर बोलते है जान सुते है पौत्रायण से समन दिवा ज्योतिरातम, ये जो देखो नीचे सोया हुआ जान श्रुति पौत्रायण, उसका दिन में दिवा ज्योति दिन में जैसे प्रकाश इसी के समान ज्योति आततम प्रकाश फैला हुआ है। कितने सत्कर्म करता है उसके उसका प्रकाश दिन जैसे प्रकाश ऐसे दिन के समान अर्थात दिन में अत्यंत प्रकाश। रात में जितने आलोक जलाओ दिन के प्रकाश के समान नहीं होता है। दिवा समान ज्योति उसका फैली हुई ज्योति सर्वत्र तन्मा प्रसांक्षी, उसको आगे लंघन नहीं करो, उसके अतिक्रमण नहीं करो, उसके ऊपर उठ जाओगे तत्वा प्रद्धाक्षित तुमको जला डालेगा। अर्थात ज्योति प्रकाश जो प्रकाश तुमको जला डालेगा। इतने सत्कर्म करने वाले उसके तो ज्योति इतने अधिक है, फैली हुई है, कीर्ति इतने अधिक है, उसमें इतने तेज है, उसको उल्लंघन करके उसके ऊपर नहीं जाओ। उसके ऊपर जाओगे तो तुमको जला डालेगा, उसमें नहीं जला आगे नहीं जाओ। ये पीछे वाला उसको कहा। आगे वाला जो जा रहा वो भी देवता सोवे तमोह पर प्रत्युवाच तम वर एनम एत संतम सैगवानम इवर एक वाते यूनु कथम सैगवार एक थी तम ऊह पर प्रतिवाच पर आगे जाने वाला जो अतिक्रम कर रहा था वो बोला कम वर वर उ अरे कम उ अरे अरे किसको तुम्हें ऐसे है ये तो ऐसा ही है इसको क्या तुम रेकवा जैसे कहते हो ये तो ये बेचारा ऐसा है राजा ये क्या है मतलब इसको ऐसा तिरस्कार क्या कम वो अरे एनम ए तो संतम ये तो ऐसा ही है कोई कहते वो बोले ये तो है किन्तु वो तो ऐसा ही है क्या है हाँ वो ऐसा ही है ऐसा ही मतलब कुछ नहीं कहते ऐसा मतलब इस प्रकार है तो वो तो ऐसा ही है उनके छोड़ो वो तो ऐसा ही है ऐसा ही क्या है ऐसा ही है मतलब ये एनम ए तो संतम ये तो ऐसा ही है सैगवान में बड़े कमा था जो युगवा बैल गाड़ी के साथ रहता है रेकुआ उसके जैसे इनको कहते अर्थात उनको अतिक्रम कर लेंगे तो कोई जला डाला ये क्या है बेचारा क्या है उसको अतिक्रम कर क्या हो जाए इसको तुम ऐसे बोलते हो या तो ऐसे ही साधारण है इसको तुम क्या कहते हो सैगवानम रेकुआ में बात सैगवानम युगवान गाड़ी सकट जो सकट वाला रेकुआ उसको जैसे कहते हो इसको ये तो ऐसे साधारण बेचारा है अर्थात वो सैगवा रेकवे के होता है उसको अतिक्रम करना अनुचित है वो जला डाले वो तो ठीक है इसको तुम उसके जैसे कहते हो जो सामान्य है ऐसा ही है इसको तो सैगवा रेको जैसे कहते हो रेको जैसे इसको कहते हो ये पीछे वाला बोलता है रेको क्या है पीछे वाला आगे वाला कहा इसको तुम रेको जैसे कहते हो पीछे वाला बोलता है रेको क्या है सही बार कथम सही बार कही थी पीछे वाला आगे वाला कहता था तुम इसको सही योग्य के साथ बैलगाड़ी के साथ जो रेकुआ है उसके जैसे कहते हो ये तो क्या है तो ऐसा ही है राजा इसको क्या ऐसे कहते हो तो डांट कर जो कहा ये पीछे वाला बोलता क्या सही बार को क्या है तो आगे वाला सही बार को बताते है यथा कृताय विजितायाधरया संयंत एवं एनम सर्वं तदभिसम्य यत किंच प्रजा साधु कुर्वन्ती यस्तद वेद यत स वेद स मये तदुक्तैति यथा कृताय विजेताय एक क्रीडा है पासा खेलते हैं अक्षय जीवती द्युत क्रीडा है उसमें ऐसे डालते हैं हाथी दंत के अन्य किसे लबनाते के डालते हैं उसमें किसमें चार चिन्ह होता है किसमें तीन चिन्ह होता है किसमें दो होता है किसमें एक होता है उसके नाम चार चिन्ह है तीन है तो उसको त्रेता कहते दो हो तो उसको द्वापर कहते एक हो तो कलि कहते जो कृताय चार नाम के है चार अंक वाला उसको जो जीत लेता है चार को जो प्राप्त कर लिया एक दो तीन उसमें अंतर्भूत हो गया चार को जीत लिया विजेताय अधरया संयति नीचे वाले सब उसको प्राप्त हो गए एक दो तीन अंक वाले उसको प्राप्त हो गया जो त्रेता द्वापर कली नाम के है अंतर्भूत हो गए चार को प्राप्त कर लिया तो एक दो तीन उसमें अंतर्भूत होगी और दो को प्राप्त किया तो उसमें तीन चार अंतर्भूत हुआ नहीं और एक आया तो एक या दो तीन चार नहीं आया क्यों चार जिसको आ गया सब उसमें आ गया अधिक सब जीत लिया एवं एनम सर्वम तद अभिसमिति इसी प्रकार इसको सब कुछ प्राप्त होता है। किसी को सब कुछ क्या, यत किंच प्रजा साधु कुर्वन्ती, जितने प्रजा है मनुष्य साधु अच्छा कर्म करते हैं, जितने शोभन कर्म शास्त्र भीत कर्म उपासना करते हैं, उनको जो मिलता है ये सब इसको मिल जाता है। जैसे चार को जीतने वाले एक दो तीन को सब जीत लिया उसे अंतर्भूत हो गया, इसी प्रकार ये रेई को जो जानता है उपासना करता है उसके द्वारा क्या होता है, सारे मनुष्य प्रजा जितने कर्म उपासना करते हैं उनका जितने फल सारे फल रेई को उपासना के अंतर्भूत है, सब उसको मिल जाता है। एवं एनम इसे रेको को सर्वम तदभिसमिति सब कुछ प्राप्त होता है। यत किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जितने साधु शोभन कर्म उपासना करते सब इसको प्राप्त होता है। किसको, यश तद्वेद, यश वेद रेको जिसको जानता है, इसको यदि कोई जान लेता है उपासना करता है सारे प्रजा के पुण्य कर्म फल उपासना का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ये अन्नदान थोड़ा क्या थे, क्या है अन्नदान करने वाले क्या फल, अन्य जितने दान करने वाले, अन्य उपासना करने वाले, ज्योतिष आदि कर्म, अश्वमेध आदि यज्ञ, जितने कर्म सब जहां जो करते सब का फल इसको मिल जाता है जो रेई को जिसकी उपासना करता है। कितने उत्कृष्ट है रेई को, इसके क्या है तो थोड़ा सा कुछ करता है सारे प्रजाओं के कर्म फल उसको मिल जाता है जो उसकी उपासना करता है, और उसकी जो उपासना करने अन्य व्यक्ति उसको भी इसे मिल जाता है। तद्वेद यथ सवेद, जिसको रेको जानता है उसकी जो उपासना करता है उसको सारे कर्म फल मिल जाता है, सबसे उत्कृष्ट वही मया एतदूत में ही कहा रेको के लिए। तो ये जानश्रुति सोचा इतना अन्नदान करके बड़ा बहुत धन संपत्ति अन्नदान किया, घर बनाया सबको, किंतु इससे भी कोई एक से अधिक है, मुझे तो इतने कर्म है जितने करता हूं और भी जितने कर्म करते उपासना करता है सब फल उसको मिल जाता है, अर्थात उसके फल में अंतर्भूत हम तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके मन में रात में नींद क्या आएगी, रात भर सोचा सब करते उसको जो कहा वो पक्षी बन करके उसका दिमाग क्यों हुई, पीछे वाला क्या कहा, आगे वाला क्या कहा, पीछे क्या कहा, यह पूरा कोई शास्त्र वेदांत श्रवण करते तो सब याद नहीं रहता है, कोई गाली देगा तो बोलेंगे नहीं, भगवान के पास जाते भजन करते सब कुछ उपदेश किया वो सब सुना कि मैं राहत रास्ता में जाते समय कोई थोड़ा कुछ कह दिया बस वो झगड़ा है तुरंत हम क्या कहा, दूसरे दिन कुछ याद है उसको भूल नहीं पाते हैं उसने क्या कहा, हमको कैसे टेढ़ी देखा, फिर कोई याद रह जाता ना भूलना भी कठिन होता है, देखते ही क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति, देखते ही क्रोध आ जाएगा, रात भर उसको लगा उसकी निंदा हुई बार बार। जब तदु जान श्रुति पौत्रायण उपस श्राव सुन लिया जब उनकी बात को, सहसन जिहान एव क्षतारम वाचा अंगारे ह सहयुगवान में वरिकमा थे थी यो नु कथम सहयुगवार थी, जान श्रुति उसको सुना सुन करके अपने निंदा सुन करके बार बार रात में सुन रहा, और रात में सुबह जब हुआ संजिहान थोड़ी निद्रा हो जाए तो निद्रा का त्याग किया, रात्रि पूरा हो गया रात्रि का शेष करके उसका स्मरण करके बार बार उसको सोचते रात पर समाप्त हो गया, और बंदी लोग राजा को जगाने के लिए आते स्तुति करने के लिए, सब लोग आकर स्तुति करने के जो आए कहा छत्तारम जो सारथी आया वाच अंग समुद अंग, अरे हाँ सहयुगवान व्यवहार एक माथा क्या मुझे सहयुगवार एक जैसे तुम जानते हो क्या, उनको क्या कहा, अरे तुम आकर क्या ये जो सहयुगवार बैले गाड़ी के साथ रेक को रहता है उसके जैसे तुम मेरी स्तुति करते हो, उसके जैसे मुझे मानते हो, अर्थात वो तो है स्तुति के लिए योग्य, मेरी क्या स्तुति करते हो, तुम क्या सहयुगवार एक जैसे कहते हो, तो उनके मन में तो ही है वही सुना था, अरे इसको क्या सहयुगवार एक जैसे कहते हो, वो लोग क्या स्तुति करने लगे, अरे क्या तुम हमको सहयुगवार एक जैसे मानते हो, तो फिर सारथी बोला ये क्या सहयुगवार एक यो नो कथम सहयुगवार कहती, क्या वो सहयुगवार को जो आपने कहा वो कैसा है, तो राजा कहते यथा कृताय विजिताय अधर या संयंती एवं एनम एवं एनम सर्वम तदभि संप्रैती समैती यत किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यत तद्वेद यत सवेद समयत दुक्तैति, वही वाक्य जो हंसा ने कहा था वही पूरा मन में कहा, जैसे कृताय कृतरूप आय है कृताय है, कृत नाम को जो है द्वित क्रीड़ा में चार अंक वाला है उसको विजेताय जो जीत लिया अधर या मतलब निकृष्ट वाले संयत सब कुछ अंतर्भूत हो जाते हैं। इसी प्रकार एवं एनम सर्वम तथा समिति इसको सब कुछ प्राप्त होता है। सब क्या है यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति जितने मनुष्य शोभन कर्म उपासना करते सब का फल उसमें अंतर्भूत हो जाता है। किसको यस तद्वेद जो उसको जानता है उपासना करता है किसको यत सवेद रेक जिसकी उपासना करता है उसकी उपासना जो करेगा उसको तो सारे कर्म उपासना फल प्राप्त हो जाता है। वो कितने श्रेष्ठ तुम क्या मुझे रेक के जैसे कहो तो समया तो दूध में निका तो फिर सारथी आदि सोचने लगे विचार करने लगे ये कौन है सह क्षत्ता अन्वेष्य नाविदमिति प्रत्यय तम होवाच यत्रारे ब्राह्मण सन्वेषणा तद एनम रक्षेति क्षत्ता सारथी गया नगर नगर से ढूंढा ग्राम नगर से ढूंढ करके देखा बड़े बड़े नगर से ढूंढ दिया नगर ग्राम देख करके आखिर क्या न अभिदस अभिधम अन्वेष अन्वेषण करके नहीं मिला प्रत्यय वापस आ गया। ये बोला अरे इसको तुम यत्र अरे ब्राह्मण सन्वेषणा तद एनम अर्थ जहां ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी की अन्वेषणा होती है एकांत स्थान अरण्य नदी की तट कहीं एकांत स्थान में ढूंढो ये बड़े बड़े नगर में ढूंढने से कहां मिलेगा यत्र अरे ब्राह्मण से अन्वेषणा तद एनम अर्थ जहां ब्रह्मज्ञानी की अन्वेषणा होती है कोई गुफा में देखो नदी तंत्र पड़ोगे एकांत में कहीं बैठे हुए अरण्य में देखो हिमालय में ढूंढो वहां ज्ञानी मिलेंगे यहां कहां जो यहां भाग कोई आकर चलते है कहते हैं छठे आकर छठे छठे आते जो गुफा में नहीं रह सकते हैं तपस्या नहीं कर सकते हैं वो छठे छठे इधर भागते फिरते तो क्या जहां ब्रह्मज्ञानी का अनुसार ना वहां देखो ये नगर में बड़े बड़े स्थान में क्या ढूंढने से मिलेगा तो गए फिर अभी ऐसा जहां ब्रह्मज्ञानी की अन्वेषण होती इसी स्थान में देखो ऐसे स्थान अभी सब छोड़ करके एकांत स्थान देखे सो अधस्ता शकटस्य पामानम कसमानम उपोपविवेश तम हा विवाद तम न भगव सैगवा रे कोई ह प्रतिज्ञे सक्षताविदमिति प्रत्यय वो देखा अधस्ता शकटस्य कोई बैली गाड़ी है शकट उसके नीचे बैठा है अब क्या बैठकर क्या करता है पामानम कसमानम पामान खर्जी खुजली कोई एक्जिमादि खुजले उसको कंडुए न करता हुआ कसमानम देखा बैठकर अपने हाथ शरीर में कभी खुजली करके बैठा है आराम निश्चित हो गई ये देखकर के उपवेश उसके पास जाकर बैठ गया देखा ये एकांत में चुपचाप बैठा बड़ा मस्त बैठा है सर खुजला करके कोई चिंता नहीं कपड़ा कैसा है कैसा नहीं उसका ध्यान नहीं बैठ करके मैं बैठा है तो उसके पास जाकर पूछा तम अभिवादों से कहा हे भगवत तम नो सहयोग रेक हुई थी ये सहयोग रेक आप ही क्या कहेंगे बैलगाड़ी के साथ रेक कहा ये बैलगाड़ी है उसके पीछे बैठा है ये जो बैलगाड़ी वाले सकट वाले रेक आप ही क्या तो कहते अह इत अहरा हाँ मैं डांड कर कहा अरे तिरस्कार करके उसको कोई पर नहीं कौन है राजा के आदमी में कौन होती क्या हो गया अरे तिरस्कार का अप्रतिजोगी सह क्षत्ता समझ रहा हाँ कर दिया क्षत्ता खुश हो गया अभिरमी थी अभी देख लिया जान लिया कि प्रति आये वापस गया जाकर के राजा के पास पहुंच गया जाकर राजा को बताया तदुह जान श्रुति पौत्रायण षट शतानि गवाम निष्कम अश्वतरीरथम तदादाय प्रतिचक्र में तम हाभ्युवाद जान श्रुति खुश हो गया देखा समझ लिया अरे से ऋषि बैठा है और उसके बारे में थोड़ा कुछ बातचीत करके आया होगा उसको समझ लिया इसका क्या अभिप्राय है अभी ऋषि है उपासना करते है किन्तु कर्म करने के लिए पत्नी नहीं है पत्नी हो तो कर्म करना है गृहस्थाश्रम जाकर के कर्म करना है ये अभिप्राय समझ कर धन होना चाहिए कर्म करने के लिए गृहस्थाश्रम जिससे पहले आया जाया में श्या तथा प्रजाय वित्त में श्या तथा कर्म कुर्वीय ये सद्गुण संपन्न होने पर ऐसी इच्छा होती कर्म करने के लिए जो विवाह करना है सहधर्मिणी पत्नी का ग्रहण धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए, भोग के लिए नहीं, धन भी कमाना है, किस लिए? सत्कर्म करने के लिए। इसलिए उसकी मन में यही भावना थी, धन होता पत्नी होती तो कर्म करना है। ये जो उपासना रही को करता था, कुछ उपासना है, ब्रह्मज्ञानी नहीं थी तो भी संवर्ग प्राण संवर्ग उपासना करता है, तो उसे सोपाधि का ब्रह्म की उपासना है, तो भी उसके मन में इच्छा थी, गार्हस्थ अभिप्राय समझ करके धन चाहता है, तो राजा देखे उसको जो चाहिए, क्या चाहिए उसको सोच करके षट शतानी गवाम, गवा का 600 गौ, एक निष्क हार सोने का हार है, अश्वतरी रथम, अश्वतरी घोड़े से भी जो का रथ है, तद आदय उसके पास गया। तम अभिव्राज जाकर के उनका सम्मान के साथ कहा, अरे क्यों मानी षट शतानी गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथो नु माँ एताम भगवो देवताम शादी याम देवताम उपास सही थी, ईमानी षट शतानी गवाम मैं लाया आपके लिए, सो सो गौ लाया है, ये निष्क माला है, ये रथ घोड़े के साथ जुड़ा रथ है, अथो नु मे भगवो देवताम शादी, अथो इसको ग्रहण स्वीकार कीजिए, मैं मुझे इसी देवता का अनुशासन उपदेश कीजिए, यान देवताम उपास, जिस देवता की आप उपासना करते उसका उपदेश मुझे कीजिए कृपा करके। तमोह पर प्रत्युवाचा हारेत्वा शूद्र तवेव सौ गोभीरत्वीति तदह पुनरेव जानसति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तदादाय प्रतिचक्रमे। वो तह पर प्रत्युवाच, पर रेको ने कहा राजा कितने 600 गौ और मूल्यवान माला हार और रथ ये सब लेने के आते, वो कहा हारे ता शूद्र तभी बसा गो भी रख, डांट कर कहा शूद्र हारेत्वा ये इत्वा है सकट रथ, रथ के साथ जो तुम्हारा माला हारा ये हार है, जो हार के साथ रथो है गो भी सह, ये गो के साथ तवे वास्तु तुम रखो, लो भागो, अतः तुम्हारे तुम्हारे पास रखो, चाहिए इत्वा है रथ हार के साथ इत्वा गो के साथ कहा गोवीर अस्तु तब तवे व अस्तु तुम्हारे ही रहने दो, तुम रखो जाओ। अब उसमें कहा शूद्र कह करके, वो तो राजा है, क्या शूद्र, वो धिकार कहे शूद्र जा रहो। तो यहाँ ब्रह्मसूत्र में विचार आता है, ये तो राजा है, ये शूद्र किसे कहा, और शूद्रों का एक अपशूद्र अधिकरण है, ब्रह्मसूत्र में आता है, शूद्रों का वेद अध्ययन करने के लिए जिनका यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं होता है उनको वेद अध्ययन वेद मंत्र पाठ निषिद्ध है, ये विचार आया ब्रह्मसूत्र में अपशूद्र अधिकरण में। तो क्या फिर शूद्र होने पर क्या उनको ज्ञान नहीं होगा, तो उसमें अंत में सिद्धांत किया गया ज्ञान के लिए निषेध नहीं, किंतु वेद मंत्र पढ़ने के लिए निषेध है, ज्ञान हो सकता है स्मृति ग्रंथ के द्वारा अन्य श्रवण करके ज्ञान हो सकता है, ज्ञान का निषेध नहीं, ये से अपशूद्र अधिकरण आया संक्षेप से बता दिया, उसमें बहुत विचार आता है। तो वहां पूरा विचार क्या है, देखो ये शूद्र को भी ये उन्होंने उपदेश किया, पहले तो शूद्र कहा बाद में जो आया आगे उपदेश करेंगे, तो शूद्र का भी उपदेश है वैदिक विद्या में, वैदिक विद्या में शूद्र का उपदेश है अथवा नहीं ये विचार आया, तो वैदिक विद्या में अधिकार नहीं ये निर्णय हुआ, तो यहां तो शूद्र का अगर उपदेश किया गया होना चाहिए, तो इसमें शूद्र शब्द का अर्थ यहां वस्तु तो जाति से शूद्र नहीं था, ये तो राजा है क्षत्रिय, किंतु फिर शूद्र कैसे कहा, शूद्र अर्थ क्या सूचा आद्रुभाव शोक से आया इसे शूद्र, उसको देवता लोग पक्षी बनकर हंस बनकर कहा शोक हुआ, शोक से आया सूचा आद्रुव ध्रुव तीर्थ, शोक से आया इसे शूद्र शब्द से कहा परोक्ष ज्ञत्वम अपने परोक्ष को जानता ये प्रकट किया कि मैं जान वो देखा दिया ये आया शोक से आया ये बताया, अथवा दूसरे मत है अल्प धन लेकर आया ये इसे क्रुद्ध होकर क्या शूद्र घर की तिरस्कार कर दिया, वस्तु तो शूद्र नहीं, और तृतीय दे दिया शूद्र जैसे ये थोड़ा धन देकर ग्रहण करना चाहता है विद्या प्राप्ति के लिए धन देने पर भी सेवा करनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ये शूद्र जैसे इसे आया शूद्रवत धन नहीं वह विद्या ग्रहण कर आया, ऐसे शुश्रूषा नहीं, सेवा भाव नहीं, नम्रता नहीं, शूद्र जैसे आया करके उसको शूद्र कहा। ऐसे विभिन्न प्रकार ये भाष्य में यहां भी है, जाति से शूद्र नहीं था तो धिकार कर कह दिया। फिर तदुह पुनरेव जान श्रुति पौत्राण, फिर जान श्रुति राजा समझ लिया, समझ लिया कि ये जो धन है इसको गृहस्थ आश्रम में जाना है, इच्छा है और धन चाहिए कर्म करने के लिए, तो इतने थोड़े इतने से उसको पर्याप्त नहीं है, वो चाहते हैं। तो फिर वो आगे क्या क्या जान श्रुति पौत्राण सहस्रम गवाम, पहले कितने गो लिया था, अभी 1000 गो लेकर गया निष्कम अश्वत्थ रथ। और गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है तो उसको पत्नी शादी कर विवाह करना है, दूही तरम तदादाय प्रति चक्र में अपनी पुत्री, पुत्री है उसके लिए पत्नी के लिए लेकर के गया, क्यों गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं। तं हा विवादरे क्वीदम सहस्रम गवामयम निष्कोयम अश्वत्थ रथम यम जायायम ग्राम यस्मिन आसेम अन्वेव मां भगव साधीति, जाकर के फिर कहा अरे को इदम सहस्रम गवाम, गवाम सहस्रम 1000 गो लाया, इस 1000 गोवे ये निष्का बहुत मूल्यवान माला, ये रथ है घोड़े के साथ है, यम जाया ये जो पुत्री है आपके लिए मिलाया पत्नी रूप से, आप चाहते इसको ग्रहण करो। अयम ग्राम जिस ग्राम में आप रहते ये ग्राम भी आपका हुआ, अब इस ग्राम से जो को राज्य होगा ये आपका होगा, ये सब ग्रहण कीजिए। अनु एवं मां भगवसा दीदी इसके बाद मुझे उपदेश कीजिए। तो उसके बाद एक तस्या मुखम उपोदृणन उवाच आ जा रे मां शुद्राने नैव मुखेन आलापयिष्यथा इति ते हई तेरे को अपर्णा नाम महावृषेषु यत्र आसना उवास तस्मै हो वाच। तस्या मुखम उपोदृणन मुख द्वार, द्वार विद्या दान के लिए तीर्थ कहते, विद्या दान करने के लिए ये मुख इसके द्वारा तीर्थ, छह तीर्थ कहा गया। तीर्थ मतलब विद्या किसको देना, जिसके पास इसमें से कुछ है उसको विद्या प्रदान करना, अर्थात विद्या प्रदान करने के लिए ये चिन्ह लक्षण है, इस चिन्ह देखने से उसके द्वारा उसको विद्या देना है। इस शास्त्र में विद्या का द्वार तीर्थ इसे कहा गया। भाष्य में श्लोक है ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्यां प्राह तानि तीर्थानि शरण मम, विद्या स्वयं कहती छे मेरा तीर्थ है, अर्थात विद्या प्रदान करने के लिए योग्यता रूप ब्रह्मचारी कोई है। अभी गुरुकुल में वास करता है, वेद अध्ययन करना व्रत है सेवापूर्वक, ब्रह्मचारी ये एक है। दूसरा धनदायी, धन दातुशील जिसका स्वभाव धन बहुत दान देता है, और मेधावी मेधा शक्ति अधिक है, श्रोत्रिय शास्त्र अध्ययन बहुत किया है, ऋषि महर्षि जाते बाद में आएगा श्रोत्रिय है उसको उनको भी विद्या देना, और प्रिय जो हो पुत्र हो शिष्य हो विद्या व विद्या प्राह, और एक विद्या से भी विद्या उनसे कुछ विद्या ग्रहण करते हो उनको एक विद्या दो, ऐसे ये भी है। कितने छह देखो हिसाब करो, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी क्षत्रिय प्रिय और विद्या से विद्या, इसे हुआ। अन्यत्र कहा गया है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा से विद्या की प्राप्ति होती, गुरु शुश्रूषया विद्या इसलिए तीन रखा है। अन्य कुछ होने पर भी गुरु शुश्रूषा तो अवश्य है, इसलिए इसको भी कहा था धन शूद्र जैसे तुम खाली धन देकर विद्या ग्रहण करना चाहते हो निंदा करने के लिए, अर्थात जो खाली धन देकर के सेवा नहीं करता खाली धन देकर विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको क्या शूद्र जैसे। ये तीन में रखा है गुरु शुश्रूषया, एक सबसे बड़ा साधन गुरु शुश्रूषा सेवा, गुरु शुश्रूषया विद्या। और धन जो है पुष्कल न धन नवा, धन देकर के विद्या प्राप्त करना है तो पुष्कल है ना बहुत पर्याप्त धन से, थोड़े धन देने से धन नहीं, पुष्कल है ना धन है ना बहुत धन से, द्वितीय हो गया। और तृतीय हो गया विद्या विद्या अथवा विद्या विद्या, विद्या से विद्या। अब अपने देखे हैं काशी में ऐसे विद्वान अभी कोई कोई होते हैं, अभी महात्मा भी है, कोई व्याकरण में अच्छा पढ़ा है, न्याय नहीं पढ़ा, तो उनके पास न्याय पढ़ते हैं, जिनसे न्याय पढ़ते हैं वो उनसे व्याकरण पढ़ते हैं, उसका हम व्याकरण पढ़ाते हैं, उनसे न्याय पढ़ते हैं। तो ये पर व्याकरण के शिष्य न्याय के गुरु, वो न्याय पढ़ाते हैं, और जो व्याकरण के आचार्य वो छात्र बन जाते हैं न्याय पढ़ते समय। तो एक विद्या ग्रहण करके विद्या दूसरे विद्या देते हैं, तो विद्या से विद्या देने के तो जिनके पास विद्या है वैसे हो सकता है, और दो ही रहा, गुरु शुश्रूषा विद्या अथवा पुष्कल धन। पुष्कल धन जैसे आया था राजा बाला के संवाद में, खाली ब्रह्मते ब्रवाणित सुन करके कहा सहस्र गो सहस्र, 1000 गो का हिसाब करो कीमत तो मालूम कितना होता है मालूम है, 1000 गो का कीमत कितने होगा, 1000 को 100 रूपया तो 1 लाख होता है ना, 100 रूपया तो 1 लाख वस्तु, तो 100 रूपया नहीं हिसाब करने के बताते, 1000 रूपया तो कितने होगा, 1050000, चलो हिसाब सीधा हो जा, हिसाब करने बैठे 50000 का 1000 गुणा करना 5 करोड़ रूपया, हिसाब सीधा हो तो 5 करोड़ तो कितने लोगों के पास, सब लोगों के पास होगा नहीं देने के लिए, जिनके पास है वो कितने, मतलब इतने गो सहसम, और इसमें आगे आएगा बृहदारण्य उपनिषद में, ये तो चांदोग में नहीं, याज्ञवल्क्य जनक संवाद आएगा, जनक कितने बार एक एक पर्याय में एक एक सौ एक सौ गो कितने बार देते हैं, बहुत देने के बाद वो स्वीकार नहीं करते, फिर उपदेश करते हैं, अंत में तो पूरा राज्य दे दिया। तो पुष्कल है ना धन है ना भाई, यहाँ पुष्कल धन, इसलिए कहा इतने देते बात होते 1000 गो दे दिया, 1000 5 करोड़ हो गया, एक दो गोदान 3-4-10 गोदान करने में तो कितना अधिक होता है, और 1000 गोदान हिसाब करते ही डर लग जाएगा, 5 करोड़ नाम सुनते ही। तो पुष्कल है ना धन्यवाद गुरु शुश्रूषया, तो यहाँ 6 कह दिया, 6 में से इसे कोई ब्रह्मचारी, किंतु इसलिए कहा जो ब्रह्मचारी है वो भी तो सेवा करता है, सेवा श्रोत्रिय हो प्रिय हो मेधावी हो जितने भी हो सेवा के बिना नहीं, इसे गुरु शुश्रूषा में बहुत कुछ अंतर्भूत हो जाता है। तो इन्होंने कहा तुमने यही दिया जो धन लाया और वो पत्नी के लिए लाया कन्या को, इसमें विद्या श्रद्धालु भी है प्रिय अभी धनदायी है धन देने वाला, इसको दे करके कहा वाच आहार इमास लाया अपने अच्छा किया, मतलब ती उचित ये विद्या के मुख द्वार को देखते हुए कहा, द्वारे विद्यादान की तीर्थ देखा अभी योग्यता है, जाए पत्नी के लिए लाया अपने कन्या, कन्यादान भी एक होता है धनदान जैसे होता है, कन्यादान कन्या को योग्य सत्पात्र में देना दान हो भी, उसको देकर कहा इमा लाया शूद्र, फिर संबोधन करता है, यहां भी शूद्र जो कहता है तो अभी जब ये लाया प्रसन्न हो गए, अनैन मुख्य न आलाप ईश्वर के द्वारा तुम विद्या ग्रहण करना चाहते हो, अच्छा है खुश हुए यदि है थे, जहां ऐसे था रेकपन्ना नाम गांव है महावृष जहां वो था तस्मे हो वाच, उसको फिर उपदेश किया। तो यहां प्रसन्न होने करके आगे उपदेश करेंगे, उपदेश किया उसमें भी शूद्र शब्द से कहा, तो यहां इसके ऊपर विचार हुआ तो आगे जो तो पहले तो शूद्र कहा था आगे क्यों कहते, तो शोक से आया था शूद्र ये कहने के लिए आगे भी शूद्र कहने से कोई आपत्ति नहीं, और जो नाराज होकर कहा था वो शूद्र शब्द यहां कहने का नहीं है, किंतु जो पहले शूद्र कहा था उसी की अनुवृत्ति है, शूद्र शब्द से कह दिया, शोक से आया था शूद्र कहकर के अच्छा करके कहकर उसको उपदेश किया। ये जो उपदेश करता है एक को आगे उपदेश करेगा, इसका नाम है संवर्ग विद्या, संवर्ग का उपदेश, संवर्ग रूप यहां उपासना है, किंतु ये उपासना अहंग्र उपासना में ही संवर्ग इस उपासना, तो अहंग्र में ही समष्टि प्राण इस उपासना, अन्य उपासना की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उससे हिरण्य गर्भ ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो जितने कर्म उपासना है सब श्रेष्ठ फल है ये हिरण्य गर्भ प्राप्ति, अन्य जितने पुण्य कर्म उपासना सब उसमें अंतर्भूत हो जाता है, इससे उत्कृष्ट है, किन्तु जो ब्रह्म ज्ञान सद्य मुक्ति का साधन वो ज्ञान नहीं है, तो यह संवर्ग विद्या है। वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेव अप्येति, यदा सूर्यास्तमेति वायुमेव अप्येति, यदा चंद्रो अस्तमेति वायुमेव अप्येति। वायुर्वाव संवर्ग, ये वायु ही संवर्ग है, संवर्ग संवर्जना सबका ग्रहण कर लेता है, सबको ग्रास कर लेता है, इसे संवर्ग। वायु सबको ग्रास करता है, सम्यक ग्रहण कर लेता है, समेट लेता है और सब छोड़ देता है, बनाता है, उत्पत्ति कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, समेट लेता है, सबको ग्रास कर लेता है, इसे संवर्ग हुआ। वायु संवर्ग कैसे हुआ? यदा भी अग्नि रुद्वायती, अग्नि जब शांत हो जाती है, वायु में अप्येति, वायु में लीन हो जाती। अग्नि जलते समय अग्नि शांत हो गई तो अग्नि कहाँ गई? तो वायु में लीन हो गई। यदा सूर्य अस्तमेति, जब सूर्य अस्त हो जाते हैं कहाँ जाएंगे? वायु में अप्येति, वायु में ही चले गए। जो जहां कुछ क्रिया है प्राण वायु के द्वारा, सूर्य अस्त गए तो वायु उसको ले गया। यदा चंद्र अस्तमेति, वायु में अप्येति, चंद्र व्यस्त होते तो वायु में लीन होते हैं। तो यहाँ अग्नि सूर्य चंद्र वायु में लीन होते हैं, वायु इन तीनों को ग्रास कर लेने से वायु का संवर्ग। और आगे कहते हैं यदा आप उच्छुष्यन्ति वायु में पीयन्ति, वायु हेवयितान सर्वान संवृक्त इति अधिदेवतम। जो जल सूख जाता है वायु में पीयन्ति, कपड़ा सुखाते तो वायु में ही पानी सूख जाता है, वायु में चलेगी पानी। वायु ही एवं सर्वान समृते, ये सबको वायु ही सबको ग्रास कर लेता है, सबको अपने ले लेता है, सबको ग्रहण कर लेता है, इसलिए उसका नाम है संवर्ग। अग्नि सूर्य चंद्र और जल, ये सबको वायु ग्रहण कर लेने से हो गया संवर्ग, अधि देवता संबंधी संवर्ग का। अथाध्यात्म प्राणुवाव संवर्ग स्वेदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति, प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मन प्राणो ये वेतान सर्वान संवृत्त इति। जिस संवर्ग उपास कहा आदिदेव समष्टि वायु के लिए संवर्ग कहा, अथ अध्यात्मम देह में अभी संवर्ग कहते हैं। देह में संवर्ग को न प्राणो वाव संवर्ग, ये जो देह में शरीर में प्राण वायु है यही संवर्ग है। शैदा स्वपिति, जो सुषुप्ति अवस्था में सो जाता है तथा प्राणमेव वाग अप्येति, उसमें वाघ इंद्र काम नहीं करती है, प्राण में लीन हो जाती है। प्राणम चक्षु, प्राण चक्षु भी श्रोत्र भी मन भी सब प्राण में लीन हो गए, प्राण चलता रहता है, सब अपने कार्य से उपरत हो गए, उपरत हो गए मतलब सब प्राण में एक हो गए। इसमें वाघ चक्षु श्रोत्र और मन ये चार सौ प्राण में लीन हो गए। सुश्रुति जगता है तो प्राण चलता है, प्राण से फिर आते हैं, तो ये प्राण हो गया और देह के अंदर संवर्ग। दो हो गए, बाहर संवर्ग हो गया वायु, देह के अंदर संवर्ग हो गया प्राण। तो वाय तो दो संवर्ग वायु रेव देवेशु प्राण प्राणेशु, दो संवर्ग हो गए। संवर्जन गुण सबको ग्रहण करना, त्याग करना, ग्रास करना। वायु रेव देवेशु, देव में वायु संवर्ग हो गया, और प्राणी सुखा था बाघाद इंद्रिय में, प्राणी सुखा था इंद्रिय में, भागाद इंद्रिय में प्राण हो गया, मुख्य प्राण हो गया संवर्ग। अथ शौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्षसेनी परिविश्यमानो ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्माउ ह न ददतु। ये संवर्ग उपासना करने वाले के ब्रह्मचारी क्या चिंतन करता है? मैं ही संवर्ग हूं, ये समस्त वायु बाहर वायु है जो सबको सम्यक ग्रसन कर लेता है, अग्नि चंद्र अग्नि सूर्य चंद्र और जल सबको ग्रास करने वाला संवर्ग में हूँ, और प्राण रूप से संवर्ग रूप से मैं हूँ, जिसमें वाघ चक्षु श्रोत्र मन सौलीन हो जाते हैं, वही संवर्ग में हूँ, समस्त प्राण हिरण्यगर्भ में हूँ। ऐसे चिंतन उपासना करते करते इतने दृढ़ उपासना में दृढ़ हो गया, उपासना ऐसे करना है, उपासना करते करते ऐसे उपासना इतने तन्मय हो जाए, देव भूत्वा देवान अप्येति, देवत्व को प्राप्त करेगा, उपासना करते करते स्वयं देव हो करके देवत्व हो जाता है, देव हो जाता है। तो ऐसे चिंतन करते करते इतने दृढ़ उसका निश्चय हो गया कि वो भिक्षा में जा रहा है तो भी सोचता है मैं ही संवर्ग हूँ, मैं ही संवर्ग हूँ, ऐसे अपने से रटता नहीं, तो उसका अभिमान हो गया मैं ही संवर्ग हूँ समष्टि वायु, ऐसे करे भिक्षा में जाता है, किन्तु वो इसको भूलता नहीं। कुछ कार्य करते भगवान का ध्यान करते तो मन इधर उधर भागता है, और कुछ कार्य में लगे जपाती छोड़ कर उसको भूल जाती, कार्य में लगे तो बस बह गई। किन्तु ये होना चाहिए कार्य में जाते समय उसको नहीं भूलना चाहिए, ना लक्ष्य को भूलना है, उसके प्राप्ति के साधन भगवान का नाम लेते भगवान करते तो उसमें कुछ अध्ययन श्रवण किया उसमें मन उसमें रहना चाहिए, नहीं तो ज्यादातर भूल जाते हैं। ये भिक्षा में जाता है तो इसे अभ्यास करने वाले चलते फिरते भी चिंता न चले, ध्यान वेदांत विचार करते समय इतने दृढ़ हो जाए चलते समय विचार में कुछ नहीं विचार चलेगा, पहले तो बैठकर विचार करेंगे समझ आया विचार होने पर चलते फिरते भी ऐसा। अथवा जो वेदांत विचार नहीं करता भगवान का नाम लेता है चलते फिरते भगवान को भूले नहीं, ऐसे भगवान के चरण में बैठा हो भगवान का नाम ले तो नाम लेते खाली हाथ से माला चलते नाम लेते कि मन कहीं भागता है ऐसा नहीं, हाथ से माला चले नहीं चले मन परमात्मा के चरण में लगे परमात्मा का चिंतन करे ऐसे करते करते। और लोग में व्यवहार बातचीत करते समय कभी कभी सोहता बात करनी पड़ती है करते ठीक है किन्तु स्वयं भी अपने लक्ष्य को नहीं भूले, ऐसे फालतू बात करते सबसे बह करके बात करके आगे नहीं जा करके भगवान का नाम लेते रहे। ये नहीं कि दूसरे को सुनाने के लिए, कोई कोई से होता अभ्यास हो जाता है बीच में बड़े जोर से कहे हा राम हाँ बीच में जी बोलने का, दूसरे को सुनाने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए, कुछ जैसा होता है वो बोलते रहते जो दूसरे को समझे बड़े भक्त है उन्हें अंदर से भावना हो, शब्द नहीं करके भावना करना मुख्य है, और शब्द नहीं करे तो अच्छा शब्द करे तो कोई आपत्ति नहीं किन्तु मुख्य है मन लगना चाहिए, मन नहीं लगा के शब्द से बोला अभ्यास हो जाता है, बहुत शब्द से बोलते मन नहीं होता, मन उस समय परमात्मा लगे रहे ऐसे व्यवहार करते समय बहुत समय बैठे तो भी अपने चिंतन छोड़े नहीं। अब ऐसे कुछ माला बना कर देखा करके जब ऐसे करते नहीं बैठे वो करते रहते ये हम जब करते रहते वो भावना जहां हो जाए दिखाने के लिए बनावटी वो तो रास्ता छट गया, ये भावना नहीं होनी चाहिए। यदि जितना हो सकता है अपने आप चिंतन करते ठीक है, दूसरे को दिखाने की भावना क्या चिंतन है, दूसरे को दिखाने क्या जरूरत है, अपने आप चिंतन करें। इसलिए नियम है माला को छिपा कर रखते हैं माला पता नहीं चलेगा, इसी प्रकार जप करे भगवान का नाम ले कोई जरूर नहीं दिखाना बैठना। प्राणायाम करते हैं हम बताते पाठ में बैठने वाले किसको नींद लगती तो क्या करना प्राणायाम करो, प्राणायाम करने के लिए क्या नाक पकड़ना पड़ेगा जरूरी है, नाक नहीं पकड़ कर सकते बैठ करके बैठे सांस को रोक दो किसको पता नहीं चलेगा, नींद लगते है तो क्या करना सांस को रोक दो करो, नहीं तो लंबा सांस ले तो छोड़ो, नहीं तो रोका फिर छोड़ दिया फिर रोका रुकते रहे फिर छोड़ दिया, ऐसे आप बैठ करके करते तो पता नहीं चलेगा। तो निद्रा को तमोगुण से निद्रा होती है उसको रोकने के प्राणायाम करने से निद्रा को जीतते है मन एकाग्र होता है। इसी प्रकार जपादि करते रहे किन्तु दूसरे को दिखाना ये भावना नहीं हो, दूसरे को नहीं पता चले ये अच्छा है अपनी चिंता न करें, तो ये हमेशा ही अपने लक्ष्य को नहीं भूले। ध्यान करते समय इसे करते करते जिस प्रकार व्यवहार करते समय चलते फिरते उसको भूले नहीं। ब्रह्मचारी भिक्षा के रहता है वो अपने को मानता है समर्ग, जब भिक्षा में गया तो कौन सौनक के नाम है और काप्य कपि गोत्र में है सौनक है सुको सुनक है पिता का नाम इसलिए पुत्र का नाम सौनक हो गया, कपि नाम गोत्र से उत्पन्न हुए और अभिप्रतारिणी नाम है अभिप्रतारिणी कक्ष सैनी के पुत्र काक्ष सैनी वो भोजन कर बैठे परिविश्य मानो उनको वो कोई परोसने वाले भोजन कर रहे भोजन दे रहे, अभी बैठे भोजन क्या नहीं बैठे भोजन करने के लिए कोई परोसना है, उस समय ब्रह्मचारी विभिक्षे जो संवर्ग उपासन करे ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने लगा नारायण हरे ऐसे कह देते हैं। जो सन्यासी के लिए भिक्षा मांगने के लिए वो अपने भगवान का नाम उनको सुना देना, सन्यासी का कर्तव्य आकर के भगवान का नाम सुना दो, गृहस्थ का धर्म है कोई सन्यासी ब्रह्मचारी आया उसको भिक्षा देना नारायण हरे संबोधन कर बुला दिया, वो जब नहीं सुन पाए दो बार बोले सुनने के बाद वो आकर के उनका कर्तव्य भिक्षा देना, कभी कभी उनके पास नहीं तो यदि कहते थोड़ी देर रुके हम ले आते तो उसको रुकना चाहिए, क्योंकि किसके तार पहुंचे यदि भिक्षा के बिना वापस जाए गृहस्थ की बहुत हानि होती है। यमराज के घर में ब्राह्मण आए थे तो वैश्वानर प्रविशंति अतिथि ब्राह्मणो ग्रहण, जैसे अग्नि आने पर घर जला देती है इसी वजह कोई अतिथि ब्राह्मण आए तो वैश्वानर अग्नि के समान है सारे धर्म सब नष्ट कर देते हैं, तस्सीताम शांति कुरवंती हर वैश्व उदकम ये कहते इसके शांति के लिए जल लेकर के पाद प्रख्यान करो उसको शांति करो, कोई आए तो कोई सन्यासी महात्मा घर में आए तो भोजन कुछ नहीं कर चला गया तो अनिष्ट होता है, इसलिए कुछ हो तो थोड़ा कुछ कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ तो कुछ दे दे, धन रुपया मांगने वाले धन की आवश्यकता नहीं, खाद्य पदार्थ कुछ दे रहे, धन की कोई जरूरत नहीं। तो ये हो तो वो भिक्षा मांगा तो कहने के बाद तो ये लोग बैठे देख जानते उपासना कर रहा है और अपने को बड़े उपासना तो थोड़ा वैश्वान उपासना करता है। तभी भिक्षे तस्में वो न दतु, वो भिक्षा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहते देखो ये क्या बोल रहा है, ये जानते है भिक्षा करता है उसका ऐसे भाव है, कभी कभी सुना होगा और सुनते क्या कहता है देखो। तो ये कहता है सहोवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मै एतन्न दत्तमिति। सवात महात्मन चतुर, चारि महात्मा को देव एकः कः स जगार, चारि महात्मा को एक देव है जो निगल लेता है, कह प्रजापति कहे प्रजापति उसको ग्रास कर लेता है। चार ही महात्मा को, चार ही महात्मा क्या है, वायु चार ही को ग्रास कर लेता है, अग्नि आदित्य चंद्र जल ये चार ही महात्मा है, चार ही महात्मा को ग्रास करने वाला। और यहां भी प्राण है चार ही महात्मा को ग्रास करता है, किसको? चक्षु श्रोत्र मन और वाक, वाक चक्षु, ये चार ही महात्मा को जो द्वितीय भोजन चतुरो महात्मन एक देव है। कह का दो अर्थ क्या, कह मतलब कौन ऐसा एक देव है जो चार महात्मा को ग्रास कर लेता है, और कह का अर्थ ब्रह्मा है प्रजापति है सब को ग्रास कर लेता है। जो ग्रास करने वाला है भुवन से गोपा, सारे ब्रह्मांड का रक्षा करने वाले वही है, ब्रह्मांड का पालन करने वाले रक्षा करने वाले। तम हे कापेय मर्त्या नाभि पश्यन्ति, मनुष्य उसको नहीं देखते हैं। जो एक महात्मा एक है चारों को ग्रास करने वाले, जो ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले प्रजापति है, उसको मर्त्य मनुष्य लोग को नहीं देख पाते हैं। अर्थात वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, अपने को मानता है मैं ही संवर्ग हूं। ये जो संवर्ग चार ही महात्मा को ग्रास करने वाले अग्नि आदित्य सूर्य जल अथवा वाघ चक्षु सूत्र मन, ऐसे चार महात्मा को ग्रास करने वाले जो प्रजापति है, उसको ये लोग नहीं देख पाते है। अभिप्रतारिन उनका नाम जानता है, नाम लेकर कहता है हे कापेय हे अभिप्रतारिन बहुधा वसंतम, वो बहुत प्रकार रहता है, अनेक रूप रहता है ये प्रजापति समष्टि, ये उसको नहीं देख पाते हैं लोग मृत्यु। यस्मेवा एतद अन्नम, जिसके लिए अन्न भोजन पकाए तस्मे एतद न दत्तमिति, उसको प्रजापति है ब्रह्म है उसके लिए अन्न पकाए, उसके लिए तुम पूजा आदि अर्पण करते हो, उसको अन्न नहीं दिया। अपने को क्या मानता है, स्वयं प्रजापति मैं हूँ तुम्हारे द्वार खड़ा हूँ, जिसके लिए तुम भोजन ये मर्त्य लोग पकाते उसको नहीं देख पाते, जिसके लिए अन्न पकाए पूजा करना है के लिए उसको अन्न नहीं दिया। तुम्हारे द्वार पर प्रजापति आए, प्रजापति को अन्न नहीं देते हो, ये संवर्ग उसको नहीं दिया। ऐसे कहने पर उनको कहा तुम नहीं जानते हो करके, फिर उसको सुन करके अभी भोजन तो प्रारंभ नहीं हुआ था, तो जा करके फिर उसके पास पहुंच करके फिर उसको कहते हैं। तो ये जो संवर्ग क्या है यहाँ आगे वो लोग जाकर उसको बताएंगे। यहाँ तक हुआ तो इतने उपासना करके इतने तन्मय हो जाता था, तो भिक्षा करने जाता है तो अपने को संवर्ग मानता है, तुम हमारे लिए भोजन पकाते हो हमको भोजन नहीं दिया तुमने। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।